अपभ्रंश भाषा उद्भव और विकास, अपभ्रंश संज्ञा। भारतीय आर्य भाषा के विकास की जो अवस्था अपभ्रंश नाम से जानी जाती है, उसके लिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रष्ट और अपभ्रंश तथा प्राकृत अपभ्रंश ग्रंथों में अवभ्रंश, अवहंस, अवहत, अवहट, अवहट, अवहट आदि नाम मिलते हैं। संस्कृत में प्रायः अपभ्रंश शब्द का ही प्रयोग किया गया है। अपभ्रष्ट शब्द का लेख बहुत कम मिलता है। विष्णुधर्मोत्तर पुराण जैसे एक ग्रंथों ने ही अपभ्रष्ट संज्ञा का व्यवहार किया है। अवभ्रंश और अवहंस शब्द अपभ्रंश के ही तद्भव रूप हैं। प्राकृत अपभ्रंश के ग्रंथों में जहां संस्कृत के लिए सक्कय और प्राकृत के पाई पावन आदि रूप व्यवहारित हैं, वहां अपभ्रंश का अवभ्रंश और अवहंस हो जाना स्वाभाविक है। उद्योतन की कुबलय माला कहा 2-8वीं शताब्दी ईस्वी तथा पुष्पदंत के महापुराण 3-12वीं शताब्दी ईस्वी में ये दोनों शब्द मिलते हैं। इसी प्रकार अवहत, अवहट, अवहट, अवहट आदि रूप अपभ्रष्ट के तद्भव है और इनका प्रयोग परवर्ती कवियों में विशेष पाया जाता है। स्वयंभू ने अपनी रामायण जोड़ 8वीं शताब्दी ईस्वी में अवहत शब्द का प्रयोग किया है। शेष शब्दों का प्रयोग उद्दीयमान के संदेश रासक 12वीं शताब्दी ईस्वी, ज्योतिरीश्वर के वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वाद, विद्यापति की कीर्तिलता 14वीं शताब्दी ईस्वी का उत्तराद और प्राकृत पेनलम की वंशीधर कृत टीका 8-16वीं शताब्दी ईस्वी में मिलता है। 1. अपभ्रष्ट तृतीयम च तदनंत नराधिप खंड 3 अध्याय 3-2 की ची अवभ्रंश कावा अल्फ्रेड मास्टर दारा बीएसओएस 13-2 में उद्धृत ताकि अवहंस हो ही अपभ्रंश काव्यत्रयी की भूमिका प्री 017 पर उद्धृत 3 सक्कय पायो पुन अवहंसंड सिंधि 5 कड़वक 18 4 अवहत्थे वी खल यनु निवजेजु रामायण 114 हिंदी काव्यधारा में उद्धृत 5 अवहट्य सक्कय पायमी पेशायन्मी भाषाए लख छंदाहरणे सुकित्त भूसियम जेहि प्रथम प्रक्रम छंद 6-6 पुनु कैसन भाट संस्कृत पराकृत अवहट पैशाची सौरसेनी माग्धी छहु भाषाक तत्वज्ञ षष्ठ कलोल प्री 044 7 देसल व्ययना सबजन मिठा ते तैसन जम्प्योर अवहट्ठा प्री 068 प्रथमो भाषा तरंड प्रथम आद्यह भाषा अवहट भाषा प्रथम गाथा की टीका पेज नंबर 20 सबका अर्थ समान होते हुए भी अनेक कारणों से इस भाषा के लिए संस्कृत की अपभ्रंश संज्ञा ही गृहीत हुई। अपभ्रंश का अर्थ अपभ्रंश का साधारण शब्दार्थ स्पष्ट है। अपभ्रंश अर्थात भ्रष्ट च्युत स्खलित विकृत अथवा अशुद्ध। भाषा के सामान्य मानदंड से जो शब्द रूप च्युत हों वे अपभ्रंश हैं। यह अवश्य है कि भाषा का एक सामान्य मानदंड बोलियों के अनेक विकृत शब्द रूपों से ही स्थिर होता है, किंतु उसके साथ ही यह भी निश्चित है कि लोकव्यवहार में उस सामान्य मान के भी विकार होते रहते हैं। संभव है प्रतिमान पर दृष्टि रखने वाले विद्वानों ने ऐसे विकारों को अपभ्रंश कहने की परिपाटी बना दी हो, लेकिन इस तरह के अर्थ तथा ऐसे दूसरे अर्थ अनुमान के ही विषय हो सकते हैं। अपभ्रंश शब्द का सटीक अर्थ जानने के लिए उसके प्रयोग का इतिहास देखना अधिक संगत होगा। अपभ्रंश शब्द की प्राचीनता प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि संग्रहकार व्याडि को अपभ्रंश शब्द की जानकारी थी। भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम की वृत्ति में शब्द प्रकृति पर विचार करते हुए लिखा है कि संग्रहकार के अनुसार अपभ्रंश की प्रकृति शब्द अर्थात संस्कृत शब्द है। संग्रहकार व्याडि का उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि व्याडि महाभाष्यकार के समय दूसरी शती ईस्वी पूर्व से पहले हुए थे, लेकिन अभी एक व्याधि का ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो सका है। इसलिए परोक्ष प्रमाण के आधार पर अपभ्रंश शब्द का इतिहास इतना पहले दिखाना युक्ति संगत नहीं प्रतीत होता। अपभ्रंश शब्द का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। 3 पतंजलि ने उदाहरण देकर अपभ्रंश संबंधी अपना विचार और भी स्पष्ट कर दिया है। उनके अनुसार गौ जैसे शब्द हैं, अर्थात साधु शब्द हैं, और लोक में इसके गावी गोनी गोता गोपोतलिका आदि जो विविध रूपांतर मिलते हैं वे अपशब्द अथवा असाधु शब्द हैं। इन्हें ही महाभाष्यकार ने अपभ्रंश कहा है। पतंजलि जैसे लोकवादी मुनि के मुख से बोली के शब्दों के लिए अपशब्द और अपभ्रंश संज्ञा का प्रयोग सुनकर आश्चर्य होता है, क्योंकि उन्होंने स्थान स्थान पर एक शब्द प्रकृतिर्पभ्रंश इति संग्रहकारो वाक्यपदीयम कांडकारिका 148 का वार्तिक 2 महाभाष्यम कीलहान संस्करण भाग 1 3-06 और 468 भाग 3 3-3591 3 भरिया सोपशब्दा अल्पियासह शब्दा इति एकैकस्य हि शब्दस्य बहवोपभ्रंश तद्यथा गौर्यस्य शब्दस्य गावी गोनी गोता गोपोतलिका इतिवमाद्योपभ्रंशः वही पस्पशाहनिक पेज नंबर 21। लोक प्रचलित शब्द रूपों को लक्षित ही नहीं किया है, बल्कि शब्द प्रयोग के विषय में लोक को ही प्रमाण माना है। महाभाष्य का व्याकरण और सूत संवाद प्रसिद्ध है, जिसमें शब्द प्रयोग को लेकर व्याकरण को सूत के सम्मुख मुंह की खानी पड़ती है। यही नहीं, महाभाष्यकार ने अनेक जगह शब्द को लोकविज्ञान कहा है। लोकतो अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमो क्रियते वार्तिक पर भाष्य करते हुए जो ये कह सकता हो कि अभ्यंत्रोह लोकैन त्वह लोकः उसके द्वारा लोक में व्यवहारित बोली के शब्दों के लिए अपशब्द का प्रयोग किया जाना कुछ विस्मयकर ही लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाभाष्यकार ने उक्त कथन के द्वारा देववाणी संस्कृत के तत्कालीन आचार्यों का सामान्य विचार व्यक्त किया है। अपशब्द अथवा अपभ्रंश से उनकी घृणा का नहीं बल्कि दृष्टिकोण विशेष का पता चलता है। संस्कृत व्याकरण में अपभ्रंश शब्द। आगे चलकर हम देखते हैं कि व्याकरण में अपभ्रंश शब्द का यह अर्थ रूढ़ हो गया। यही नहीं, व्याकरणों ने प्रायः गौ वाले यही उदाहरण भी दोहराए हैं। दंडी 7वीं शती ईस्वी ने इसी परंपरा की ओर संकेत करते हुए कहा है कि शास्त्र में संस्कृत से इत्र शब्द को अपभ्रंश कहा जाता है। यहाँ शास्त्र से दंडी का अभिप्राय संस्कृत के व्याकरण शास्त्र से है। 2 दंडी के इस कथन की पुष्टि अनेक व्याकरणों द्वारा होती है। भरत मुनि ने समान शब्द के अतिरिक्त जिस विभ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया है वह यही अपभ्रंश है। भर्तृहरि 5वीं शती ने संस्कारहीन शब्दों को अपभ्रंश कहे जाने का उल्लेख किया है। 3 महाभाष्य के टीकाकार कये 10वीं शती ईस्वी ने भी उन शब्दों को अपभ्रंश कहा है जो साधु शब्दों के समान अर्थ में लोक में प्रयुक्त होते हैं। इसी तरह अन्य संस्कृत व्याकरणों का भी मत उद्धृत किया जा सकता है। इनसे व्याकरण शास्त्र में प्रचलित अपभ्रंश शब्द की उक्त अर्थ परंपरा सहज ही पुष्ट होती है। यहाँ एक बात की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट करना अनुचित न होगा कि इन व्याकरणों ने संस्कृत से इत्र भाषा अथवा बोली के लिए तो प्राकृत शब्द को प्रयोग किया, लेकिन संस्कृत से इत्र शब्द के लिए अपभ्रंश शब्द का गावी गोनी आदि अपभ्रंश शब्दों का विश्लेषण। सहज ही प्रश्न उठता है कि गावी गोनी आदि अपभ्रंश शब्द किस लोक भाषा के थे, इन शब्दों का संबंध किन प्राकृतों से था। इस प्रश्न का समाधान महाभाष्य में 1 शास्त्रे तु संस्कृतादनयदपभ्रंशत्योदितम् काव्यादर्श 1136, 2 समान शब्दम विभ्रष्ट देशीगत मथापि च नाट्यशास्त्रम 1013-3 शब्द संस्कारहीनो यो गौरिति प्रयुष्यते तम्पभ्रंशमिच्छन्ति विशिष्टोत्निवेशिनम वाक्यपदीयम कांड 1 कारिका 148 4 अपशब्दो ही लोकाय प्रयुज्यते साधु शब्द समानार्थश्च पेज नंबर 22 तो नहीं मिलता लेकिन प्राकृत व्याकरणों में इनको समझने के कुछ सूत्र अवश्य प्राप्त होते हैं चंद ने प्राकृत लक्षणम में गो के प्राकृत रूप गावी का उल्लेख किया है हेमचंद ने भी गोनी आदि प्राकृत रूपों का समर्थन किया है दो श्वेतांबर जैनों के अर्ध मागधी प्राकृत में लिखित ग्रंथों में भी गावी और गोनी रूपों को लक्षित किया गया है इस प्रकार अपभ्रंश शब्दों पर विचार करते हुए व्याकरणों का ध्यान क्रमशः संस्कृतेतर भाषाओं अथवा बोलियों की ओर गया और शीघ्र ही अपभ्रंश शब्द भाषा विशेष के लिए भी प्रयुक्त होने लगा भाषा विशेष के लिए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग बहुत संभव है गावी गोनी आदि अपभ्रंश शब्द मूलतः गोपालक आभीर जाति की बोलियों में प्रयुक्त होते रहे हों दंडी का ये कथन कि काव्यों में आभीर आदि की भाषा को अपभ्रंश नाम से स्मरण किया जाता है चार इस प्रसंग में विशेष महत्व रखता है दंडी के इसी कथन से ये भी अनुमान किया जाता है कि भरत मुनि ने जिस आभिरोक्ति का नाम लिया है वह अपभ्रंश ही थी लेकिन भरत मुनि द्वारा अपभ्रंश शब्द का प्रयोग न किया जाना कुछ तो अर्थ रखता ही है कहा जा सकता है कि तीसरी शती तक भाषा विशेष के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का व्यापक प्रसार नहीं हुआ था भाषा विशेष के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग प्रायः छठी शती ईस्वी के आसपास मिलता है प्राकृत व्याकरणों में चंद है जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपभ्रंश का नामोल्लेख किया है इसी तरह संस्कृत आलंकारिकों में भामह को अपभ्रंश के प्रथम नामोल्लेख का श्रेय है इन सबके साथ ही वल्लभी के राजा धर्सेन द्वितीय के ताम्रपत्र छठी शती ईस्वी से भी अपभ्रंश नामक भाषा के अस्तित्व की पुष्टि होती है जिसमें द्वितीय धर्सेन ने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं की प्रबंध रचना में निपुण कहा है इन उद्धरणों से प्रमाणित होता है कि ईसा की छठी शताब्दी तक आते भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग एक गोर गावी प्राकृत लक्षणम 2-16 2 गुणाद्य सिद्ध हेम शब्दानुशासन 8-2-1-7 3 खीरिन्याओ गावियो आचारांग श्रु शून्य 2304 गोनीन संगैलम व्यवहार सूत्र उ शून्य 4 इत्यादि 4 अपभ्रंश काव्य त्रयी भूमिका प्री शून्य 72 पर उद्धृत आभिरादिगिरह काव्येष्वपभ्रंश इति स्मृता काव्यादर्श 1-36 5 आभिरोक्ते शाबरी स्यात् द्राविडी द्रविदादिषु नाट्यशास्त्रम 17-55 6 न लोपोभ्रंशिधो रेफस्य प्राकृत लक्षणम 3-37 7 शब्दार्थों सहित काव्यम गद्य पद्यम च तद्विधा संस्कृत प्राकृत चान्यद्पभ्रंश इति त्रिधा काव्यालंकार 1-16 8 संस्कृत प्राकृताभ्रंश भाषात्र प्रतिबद्ध प्रबंध रचना निपुणातःकरण पेज नंबर 23 होने लगा था यही नहीं बल्कि संस्कृत आलंकारिकों द्वारा अपभ्रंश में काव्य रचना भी लक्षित की गई इसके साथ ही यह भी पता चलता है कि संस्कृत और प्राकृत महाराष्ट्री के बाद तीसरा स्थान अपभ्रंश को ही दिया शौरसेनी मागधी पैशाची आदि किसी प्राकृत को नहीं ध्यान देने की बात है जो कि अपभ्रंश शब्द ईसा से 2 शताब्दी पूर्व अपानिनीय अपशब्द के लिए प्रयुक्त होता था वही ईसा की 6 शताब्दी तक आते एक साहित्यिक भाषा की संज्ञा बन गया अपभ्रंश और देशभाषा फिर भी इस भाषा को बहुत दिनों तक देशभाषा ही समझा जाता रहा संस्कृत के आचार्यों ने तो इसे देशभाषा कहा ही, एक स्वयं अपभ्रंश कवियों ने भी अपनी भाषा को देशभाषा के रूप में स्वीकार किया। स्वयंभू ने अपनी रामायण को ग्रामीण भाषा अथवा देसी भाषा में रचित बतलाया है। अपभ्रंश के दूसरे महान कवि पुष्पदंत ने भी देसी नाम से अपभ्रंश की ओर संकेत किया है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अपभ्रंश से पहले प्राकृत को देसी कहने की प्रथा थी। चार और प्राकृत से भी पहले पाली के लिए इस संज्ञा का प्रयोग किया जाता था। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश देशभाषा पाली में ही किया था और उसी भाषा में उन्हें सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया था। इसी तरह पाली से पूर्व पाणिनीय संस्कृत भी केवल भाषा कहलाती थी, क्योंकि छंदम की तुलना में वह लोक भाषा थी। स्वयं पाणिनि भी समय की बोलचाल की भाषा संस्कृत का व्याकरण लिखते समय बीच बीच में छंदम की आर्य वाणी की विशेषताएं आंकते गए। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक युग में साहित्य रूढ़ भाषा के समानांतर कोई न कोई देशी अवश्य रही है, और यही देशी भाषा उस साहित्यिक भाषा को नया जीवन प्रदान कर सदैव विकसित करती चलती है। छंदम की भाषा ने तत्कालीन देशी भाषा से शक्ति अर्जित करके संस्कृत का रूप ग्रहण किया, और फिर संस्कृत अपने समय की देशी भाषा के सहयोग से प्राकृत के रूप में ढली। अवसर आने पर प्राकृत को भी अपनी आंतरिक रूढ़ी दूर करने के लिए लोक भाषा की सहायता लेनी पड़ी। फलतः भारतीय आर्य भाषा की अपभ्रंश अवस्था उत्पन्न हुई, जिसने आगे चलकर सिंधी एक षष्ठोत्तर भूरिभेदो देशविशेषादपभ्रंश रुद्रटकृत काव्यालंकार 2-12 लोकेषु यत्स्यात्पभ्रष्ट सिंध्यम ज्ञेयम हि तद्देशविदोदिकारम् विष्णुधर्मोत्तर 3-7-2 देसी भाषा उभे तदुज्जल कवि दुख घन सद सिलायल छुड्डू होती सुहास्य वेयनाय गामेल भास परिहरनाय रामायण 1-3-3 पाहू होमी बियखनु अनमुन्मी लखनु छंदु देसी अनवियानमी महापुराण 1-8-4 पालितयन रैया विथरो तैह य देसिव्यनेही नामिन तरंगवई कहा विचित्ता य व्यूल य पादलिप्त तरंगवतो कथा पाहुड़ दोहा की भूमिका में उद्धृत। पेज नंबर 24 गुजराती राजस्थानी पंजाबी ब्रज अवधी आदि आधुनिक देशी भाषाओं को जन्म दिया। विकास के इस क्रम में ऐसी अवस्था आती है जब आरंभिक देशी भाषा शिष्टों की साहित्यिक भाषा बन जाती है, और व्याकरण लोग उसका नियम लिखते समय शिष्टों के प्रयोग को सामने रखते हैं। जिस अपभ्रंश की महाकवु स्वयंभू ने गामेल भास कहा था, उसे ही 11वीं शताब्दी ईस्वी के व्याकरण पुरुषोत्तम ने शिष्ट के प्रयोग से जानने की सलाह दी। फिर भी आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों में इस प्रश्न को लेकर काफी विवाद हुआ है कि अपभ्रंश वास्तविक देशभाषा अर्थात बोलचाल की भाषा थी या नहीं। एक ओर पिशेल, ग्रियसन, भंडारकर, चटर्जी वुलना जैसे विद्वान हैं जो अपभ्रंश को देशभाषा मानते हैं। दूसरी ओर याकोबी, कीथ, ज्यूल ब्लॉक, अल्सडॉफ प्रभुति विद्वान हैं जो अपभ्रंश को देशभाषा मानने से इनकार करते हैं। देशभाषा पक्ष की स्थापना करते हुए पिशेल ने अनेक प्राचीन प्रमाणों के अतिरिक्त प्राकृत पैंगलम के टीकाकार रविकर का एक कथन उद्धृत किया है, जिसमें अपभ्रंश के दो प्रकार बताए गए हैं। एक तो वह अपभ्रंश जो प्राकृत से उत्पन्न हुई है और जो शब्द रचना तथा रूप रचना में प्राकृत की लीक से नहीं हटती। दूसरी अपभ्रंश वह है जो देशभाषा है। ग्रियसन ने प्रसंगात अनेक स्थानों पर अपभ्रंश की चर्चा की है और किसी न किसी रूप में उसे देशभाषा स्वीकार किया है, किंतु उन वक्तव्यों में कुछ अंतर है। जैसे लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया निबंध में उन्होंने अपभ्रंश की इतनी कुछ न व्यापक परिभाषा की है कि उसके अंतर्गत बोलचाल की प्राकृतों को भी सम्मिलित कर लिया है, और उन्हें आरंभिक अपभ्रंश कहा है। लेकिन इसके साथ ही परवर्ती अथवा वास्तविक अपभ्रंश से उसे भिन्न माना है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जिल्द एक प्री 123 में ग्रियसन ने अपभ्रंशों को प्राकृत का स्थानीय अथवा प्रादेशिक विकार कहा है। इसी प्रकार ऑन द मॉडर्न इंडो आर्यन वर्नाक्यूलर्स इंडियन एंटीक्वेरी जिल्द 60 में उन्होंने अपभ्रंश के अंतर्गत बोलचाल की प्राकृतों को लेने से इनकार करते हुए अपभ्रंश को साहित्यिक प्राकृतों को बाद की देशभाषा माना है। चटर्जी आदि अन्य परवर्ती भाषाविदों ने पिशेल तथा ग्रियसन का अनुसरण करते हुए अपभ्रंश को देशभाषा स्वीकार कर लिया है। परंतु याकोबी ने भविष्यत कहा कि भूमिका लिखते हुए 1918 में ही पिशेल के मत का दृढ़ता से विरोध किया था। याकोबी के अनुसार प्राकृत की अपेक्षा एक शेषल शिष्ट प्रयोगात पुरुषोत्तम 17-91 दो डॉक्टर 0S0N0 घोषाल कृत अंग्रेजी अनुवाद जर्नल ऑफ द ओरिएंटल इंस्टीट्यूट बड़ौदा 1954 55-56 पेज नंबर 25। अपभ्रंश में देशी शब्द तथा धातु निस्संदेह बहुत अधिक है, किंतु उन देशी शब्दों और धातुओं का एकमात्र स्रोत देशभाषाओं को मानना ठीक न होगा, क्योंकि अपभ्रंश में प्राप्त होने वाले वे देशी शब्द आधुनिक भाषाओं में बहुत कम मिलते हैं। यदि अपभ्रंश के देशी शब्द देशभाषाओं से आए होते तो उन शब्दों को देशभाषाओं से विकसित होने वाली आधुनिक भाषाओं में भी मिलना चाहिए था। चूंकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए अपभ्रंश को देशभाषा मानना कठिन है। याकोबी ने भविष्यत कहा कि शब्दों की सम्यक परीक्षा करके दिखलाया है कि इन ग्रंथ के लगभग 4000 शब्दों में देशी शब्द मुश्किल से 5% हैं। इसलिए अपभ्रंश को देशभाषा जैसी मानना असंगत होगा। याकोबी ने वाग्भ के उस कथन की भी अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है जिसको पिशेल ने अपभ्रंश को देशभाषा प्रमाणित करने के लिए उद्धृत किया था। वाग्भ ने कहा था कि अपभ्रंशस्तु यच्छुधम तत देशेषु भाषितम् उद्धरण। इसका अर्थ पिशेल ने ये लिया था कि अपभ्रंश भिन्न देशों अथवा प्रदेशों की शुद्ध की हुई भाषा है। याकोबी की राय में वाग्भ के कथन का तात्पर्य यह है कि अपभ्रंश वह है जो एक देश में शुद्ध रूप से बोली जाती है, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का मिश्रण नहीं होता। याकोबी के अनुसार इस कथन में अपभ्रंश तथा देशभाषा को एक नहीं माना गया है। इससे ऐसा आभास होता है कि स्थानीय अथवा लोक प्रचलित बोली तो शुद्ध है, किंतु अपभ्रंश शुद्ध नहीं है क्योंकि वह प्राकृत से प्रभावित है। इस प्रकार याकोबी अपभ्रंश में कुछ देशी तत्वों का मिश्रण तो स्वीकार करते हैं, किंतु अपभ्रंश को पुनर्तः देशभाषा नहीं मानते। ज्यूल ब्लॉक ने ला लांग मराठी तथा ल इंडो आर्या दो ग्रंथों में प्रसंगात अपभ्रंश की चर्चा की है। मराठी भाषा पर विचार करते हुए उन्होंने अपभ्रंश को अंतरप्रांतीय विचार विनिमय की भाषा कहा है। ब्लॉक के विचार से अपभ्रंश का संबंध किसी विशेष क्षेत्र से नहीं था। उनके अनुसार अपभ्रंश के जो रूप आधुनिक भाषाओं अथवा देशभाषाओं से समानरूपता प्रकट करते हैं, उसका कारण आधुनिक भाषाओं की लेखन शैली में उनका लिखा जाना है, न कि प्राकृत के रूपों में होने वाले ध्वनि विकार जो कि भाषा की विकास प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। वैसे एक स्थान पर ब्लॉक ये स्वीकार करते हैं कि अपने आरंभिक रूप में अपभ्रंश एक क्षेत्र की वास्तविक देशभाषा से ही उत्पन्न हुई थी, किंतु शीघ्र ही प्राकृत से अत्यधिक प्रभावित हो गई और कालक्रम से उसका एक परिनिष्ठित रूप स्थिर हो गया। अल्सडॉर्फ अपभ्रंश को इसलिए देशभाषा मानने से इनकार करते हैं कि अभी तक अपभ्रंश का कोई गद्य ग्रंथ नहीं मिला है। यद्यपि वे अपभ्रंश की मुख्य भाषा प्रकृति को देशभाषा से ही उत्पन्न मानते हैं, किंतु उस पर प्राकृत का गहरा रंग देखकर अपभ्रंश को साहित्यिक भाषा मानना ही संगत समझते हैं। पेज नंबर 26। कीथ ने हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर P032 में अपभ्रंश पर विचार करते हुए साफ शब्दों में अपभ्रंश को देशभाषा मानने से इनकार किया है और साथ ही दृढ़ता से यह स्थापना भी की है कि अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के विकास का आवश्यक प्रमाण के रूप में सोपान नहीं था। अपने मत की पुष्टि में कीथ ने हेमचंद्र उपस्थित किया है, जो कीथ के अनुसार अपभ्रंश को देशभाषा सदृश नहीं मानते। कीथ के विचार से अपभ्रंश प्राकृत को सरल करने का एक प्रयास है, जिसमें प्रधान रूप से प्राकृत शब्द तथा बहुत कुछ प्राकृत व्याकरण के रूप मौजूद थे। अपभ्रंश और पुरानी गुजराती के कुछ रूपों में समानता देखते हुए भी कीथ ने चेतावनी दी है कि इससे प्रेरित होकर अपभ्रंश को गुजराती का स्रोत मानना भ्रम होगा, क्योंकि जो समान तत्व दिखाई पड़ते हैं वे वस्तुतः उस पुरानी देशभाषा के हैं जो प्राकृत और अपभ्रंश से भी पुरानी है, और वे कालक्रम से प्राकृत तथा अपभ्रंश में आ मिले। इसीलिए ब्लॉक ने भी मराठी का उद्भव दिखलाते हुए अपभ्रंश का उपयोग नहीं किया है। कीथ ने इन विचारों का खंडन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पंडित केशव प्रसाद मिश्र ने इंडियन एंटिक्वेरी 1930 में प्रकाशित करवाया था। उन्होंने हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण के कुछ अपभ्रंश दोहों को आधुनिक देशभाषा के अनुसार यथकिंचित रूपांतर करके प्रमाणित कर दिया था कि अपभ्रंश आज की एक जीवित बोलचाल की भाषा के कितनी निकट है। वस्तुतः ये सारा विवाद इसलिए है कि अपभ्रंश संबंधी प्रस्तुत ज्ञान जिन सामग्रियों पर आधारित है, उनमें से कुछ तो आलंकारिकों एवं व्याकरणों के स्फुट विचार हैं, और शेष काव्य साहित्य और वह साहित्य भी अधिकांशतः एक विशेष संप्रदाय परंपरा से प्राप्त है। जब तक उस समय की बोलचाल की भाषा का पता देने वाली कोई अन्य प्रामाणिक सामग्री नहीं मिलती, तब तक हमें अपभ्रंश के प्राप्त साहित्य के परीक्षण से ही देशभाषा का निश्चय करना होगा। और जो विद्वान अपभ्रंश को देशभाषा मानने से इनकार करते हैं, उनके कथन से ही इतना तो निश्चित है ही कि अपभ्रंश में देशभाषा के पर्याप्त तत्व प्राप्त होते हैं। प्राकृतम वापभ्रंश निष्कर्ष यह निकला कि देशी भाषा अपभ्रंश एकदम नए सिरे से उत्पन्न नहीं हुई थी, बल्कि उसकी पूर्ववर्ती साहित्यिक प्राकृत ही देशी भाषाओं के योग से अपभ्रंश की अवस्था में विकसित हो गई। नमिसाधु ने इसी बात को अपने ढंग से इस प्रकार लिखा है कि प्राकृत ही अपभ्रंश है, परंतु विद्वानों ने इस कथन को बहुत दूर 1. प्रस्तुत समस्या पर विभिन्न विद्वानों के मतों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए डॉक्टर 0S0N0 घोषाल का निबंध कंट्रोवर्सी ओवर द सिग्निफिकेंस ऑफ अपभ्रंश जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता जिल्द 22 खंड 1 1956-2 रुद्रटकृत काव्यालंकार 2-12 की टीका आई पेज नंबर 27 तक खींचकर प्राकृत और अपभ्रंश की अभेदता स्थापित करने को चेष्टा की है। सही बात का पता लगाने के लिए नमिसाधु के कथन का पूरा प्रसंग समझना आवश्यक है। नमिसाधु का उक्त कथन रुद्रट की जिस कारिका से संबद्ध है, वह इस प्रकार प्राकृत संस्कृत मागध पिशाच भाषाश्च सूरसेनी च षष्ठोत्र भूरभेदो देशविशेषादपभ्रंश। इस पर टीक करते हुए नमिसाधु ने सबसे पहले प्राकृत को संस्कृत से भी पूर्व तथा सर्वप्रथम स्थान दिए जाने का कारण बतलाया है, और इसके साथ ही प्राकृत की परिभाषा भी दी है, पश्चात संस्कृत की परिभाषा दी है, इसके बाद क्रमशः मागधी पैशाची सूरसेनी और अपभ्रंश का लक्षण कहा गया है। उदाहरण स्वरूप मागधी की विशेषता बतलाते हुए नमिसाधु ने लिखा है कि प्राकृत भाषेव किचिद विशेष लक्षणा मागधी का भन्यते, अर्थात प्राकृत भाषा ही कुछ विशेष लक्षणों के साथ मागधी का कही जाती है। इसके बाद नमिसाधु ने मागधी के उन विशेष लक्षणों को सोदाहरण निर्दिष्ट कर दिया है। इसी तरह उन्होंने पैशाची सूरसेनी आदि को भी किंचित विशेषता के साथ प्राकृत कहा है। जब भाषाक्रम में अपभ्रंश का नाम आया तो उसी तरह अपभ्रंश को ही उन्होंने प्राकृत बतलाया। अपभ्रंश का लक्षण बतलाते समय नमिसाधु ने इतनी विशेषता दिखलाई कि उसके तीन भेदों का भी उल्लेख किया और उसके लक्षण के लिए विशेष रूप से लोक को ही मुख्य स्रोत माना। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लक्षण का उल्लेख भी विस्तार से किया। उपर्युक्त प्रसंग में प्राकृतम वापभ्रंश कथन को देखने से स्पष्ट हो जाता कि एक, प्राकृत से नमिसाधु का अभिप्राय महाराष्ट्री प्राकृत है। दो, अन्य प्राकृतों की भांति अपभ्रंश की भी प्रकृति महाराष्ट्री प्राकृत ही है। तीन, किंतु महाराष्ट्री प्राकृत पर आधारित होते हुए भी अपभ्रंश मागधी आदि अन्य प्राकृतों से विशिष्ट है। अपभ्रंश की प्रकृति। अपभ्रंश की प्रकृति के विषय में नमिसाधु के वे विचार बहुत कुछ दूसरे व्याकरणों द्वारा भी समर्थित हैं। अपभ्रंश के सबसे बड़े व्याकरण हेमचंद्र ने भी लिखा है, अपभ्रंश में विशेष प्रयोग दिखाई पड़ते हैं। वहां कहीं महाराष्ट्री प्राकृत और कहीं शौरसेनी प्राकृत की भांति कार्य होता है। 17वीं शती के प्राकृत व्याकरण मार्कंडेय ने भी इसी कथन का समर्थन किया है। मार्कंडेय के अनुसार नागर वन यस्य अपभ्रंशे विशेषो वक्ष्यते तस्यापि क्वचित् प्राकृतवत् शौरसेनीविच कार्य भवति। सिद्ध हिम शब्दानुशासन 4.8.3.2.9 की व्याख्या, पेज नंबर 28। अपभ्रंश महाराष्ट्री और शौरसेनी पर प्रतिष्ठित है, इसका यही मतलब है। कतिपय विशेष व्याकरणिक नियमों के अतिरिक्त अपभ्रंश प्रायः महाराष्ट्री प्राकृत के व्याकरण की परंपरा का पालन करती है। अपनी पूर्ववर्ती भाषा से प्रत्येक भाषा का प्रायः यही संबंध होता है। कुछ दूर तक तो वह पूर्ववर्ती भाषा पर ही आधारित होती है, परंतु भाषा विकास के अपने नियमों के अनुसार वह पूर्ववर्ती भाषा का विकसित अथवा परिष्कृत और परिवर्धित रूप भी होती है। इस प्रकार प्रत्येक भाषा अपनी प्रकृति से कुछ विशिष्ट और विभिन्न हो जाती है। प्रकृति संस्कृत से विकृति प्राकृत का यही संबंध है और प्राकृत अपभ्रंश का भी। प्रकृतेः संस्कृतम्। बात बड़ी सीधी है, फिर भी विद्वानों ने इस पर बड़ा विवाद किया है। प्राचीन काल के प्राकृत और अपभ्रंश के पक्षधर आचार्यों ने भी बड़े ही सहज ढंग से संस्कृत को प्रकृति मानकर प्राकृत व्याकरण का आरंभ किया है, लेकिन आधुनिक युग के प्राकृत प्रेमी विद्वानों ने इस सामान्य कथन के सामने भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अपभ्रंश काव्यत्रयी की संस्कृत भूमिका में श्री लालचंद्र गांधी ने इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया है। दो, वस्तुतः प्रकृति संस्कृतम वाले कथन में आधुनिक भाषा वैज्ञानिक दृष्टि वाले विद्वानों के लिए खटकने वाली वस्तु ये है कि वहां प्राकृत को संस्कृत से उत्पन्न कहा गया है। जो विद्वान प्राकृत को लोक भाषा तथा संस्कृत को उस लोक भाषा का सुधारा संवारा हुआ परिष्कृत अथवा कृत्रिम रूप मानते हैं, उनके लिए प्राकृत ही योनि है न कि संस्कृत। यदि नाटकों में प्रयुक्त प्राकृत को लें, तो साफ मालूम हो जाता है कि वह संस्कृत वाक्यों का ही यत्किंचित ध्वनि परिवर्तन किया हुआ रूप है। नाटकों के प्राकृत गद्य पद्य को संस्कृत छाया के साथ मिलाकर देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। संभव है संस्कृत को प्रकृति कहते समय व्याकरणों के मस्तिष्क में ये तथ्य भी रहा हो, लेकिन इसके अतिरिक्त ऐसा भी मालूम होता है कि संस्कृत में प्रकृति प्रत्ययादि नियमों के स्पष्ट विधान के कारण भी व्याकरणों ने प्राकृतों के विवेचन में संस्कृत को आधार बनाया हो। पम शून्य चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस विषय में एक और युक्ति उपस्थित की है। उनके विचार से प्रकृति का अर्थ है साधारण नियम मॉडल उत्सर्ग आदि और इससे जो विशेष अलौकिक भिन्नांतरित और अपवाद है वह विकृति की संज्ञा पाता। एक, नागर तू महाराष्ट्री शौरसेन्योः प्रतिष्ठितम् प्राकृत सर्वस्वम् सप्तदश पाद। दो, अपभ्रंश काव्यत्रयी भूमिका प्री शून्य 8.1.8.4। थ्री, प्रकृतेः संस्कृतम् तत्र भवम् तत् आगत्वा प्राकृतम् सिद्धहिम शून्य आठ एक एक व्याख्या पेज नंबर 29 है। एक गुलेरी जी ने मीमांसा से इन शब्दों का ऐसा अर्थ उद्धृत किया है। हेमचंद्र ने अपने सिद्ध हेम शब्दानुशासन में प्राकृतों का अध्याय समाप्त करते हुए जो शेष संस्कृत वत्सिधम लिखा है, दो उससे भी गुलेरी जी की उक्त युक्ति का समर्थन होता है। स्पष्ट है कि हेमचंद्र ने प्राकृतों के विशेष लक्षणों का निर्देश करने के बाद अंत में ये लिखना आवश्यक समझा कि प्राकृतों के जो अन्य सामान्य लक्षण हैं वे संस्कृत के ही अनुसार समझे जाएं। वस्तुतः संस्कृत को प्राकृत की प्रकृति मानने में आपत्ति उठाने का मुख्य कारण है संस्कृत और प्राकृत का पूर्वग्रह ग्रस्त अर्थ। कुछ लोगों ने ये धारणा बना ली है कि प्राकृत का अर्थ है जन साधारण की प्राकृतिक भाषा और संस्कृत का अर्थ है उस जन बोली का संस्कार किया हुआ रूप। इस तरह की धारणा फैलाने में प्राचीन आचार्यों का भी बहुत कुछ हाथ है। नमिसाधु ने संपूर्ण संसार के जंतुओं की व्याकरण आदि के संस्कार से रहित सहज वचन व्यापार से उत्पन्न भाषा को प्राकृत कहा है। इसके विपरीत उन्होंने पाणिनि आदि व्याकरणों द्वारा निर्दिष्ट शब्द लक्षण से संस्करण की हुई भाषा को संस्कृत संज्ञा दी है। परंतु संस्कृत और प्राकृत का जो साहित्य प्राप्त है उससे वस्तु स्थिति कुछ और ही मालूम होती है। नमिसाधु ने व्याकरण आदि के संस्कार से रहित जिस सहज वचन व्यापार की आदर्श प्राकृत का उल्लेख किया है उसमें रचे हुए साहित्य की जानकारी हमें नहीं है। साहित्य में प्रयुक्त होते ही वह सहज व्यापार कुछ न कुछ संस्कृत तो हो ही उठता है। इसलिए नाटकों और काव्यों की प्राकृत उस सहज वचन व्यापार का कोई न कोई परिष्कृत रूप ही है और व्याकरणों ने प्रकृति प्रत्यय आदि से उसका भी संस्कार किया है। यदि संस्कृत को पाणिनि कात्यायन पतंजलि आदि मिले तो प्राकृत को भी वररुचि और हेमचंद्र और व्याकरण प्राप्त हुए। संस्कृत भी किसी न किसी सहज वचन व्यापार का ही परिष्कृत रूप है। बोली का संस्कार करके उसे समर्थ और व्यवस्थित रूप देना बुरी बात नहीं है। ये तो मानव मनीषा का महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन आजकल सहजता स्वच्छंदता आदि की ऐसी हवा बही है कि भाषा के क्षेत्र में व्याकरण की व्यवस्था को अधिक अच्छा नहीं समझा जाता। संस्कृत के विरुद्ध प्राकृत की काल्पनिक सहजता के गौरव बोध का भी यही कारण है। 1. पुरानी हिंदी प्रथम संस्करण प्री 077 2. सिद्ध हेम 08 4 4 4 8 3. सकल जग जंतुना व्याकरणायभिर्नाहित संस्कार सहजो वचन व्यापार प्रकृते तत्र भवम सैव वा प्राकृतम पाणिन्यादि व्याकरणोदित शब्दलक्षणेन संस्करणित संस्कृत मुच्यते रुद्रटकृत काव्यालंकार 2-12 की टीका पेज नंबर 30। इसलिए भारतीय आर्य भाषा के क्रम विकास को ध्यान में रखते हुए संस्कृत को प्राकृत से पूर्ववर्ती भाषा के होने के कारण साहित्यिक प्राकृत की प्रकृति मानने में वैज्ञानिक दृष्टि से कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार जिस अर्थ में प्राकृत की प्रकृति संस्कृत है उसी अर्थ में अपभ्रंश की प्रकृति प्राकृत है। प्राकृत अर्थात शौरसेनी आदि भेदों से युक्त मुख्यतः महाराष्ट्रीय प्राकृत अपभ्रंश की विशिष्टता। परंतु अपभ्रंश को प्राकृत भाषाओं में से एक मानते हुए भी इसकी विशेष सत्ता के प्रति प्राचीन व्याकरण सतर्क थे। जहां कहीं प्राकृत के भेदों के नाम गिनाए गए हैं शौरसेनी माग्धी पैशाची चूलिका पैशाची तथा कभी कभी आवती और अर्धमाग्धी का भी नाम लिया गया है, परंतु उन स्थलों पर अपभ्रंश का नाम किसी ने नहीं लिया है। प्रायः व्याकरणों ने अपभ्रंश को इन सबसे स्वतंत्र भाषा मानकर उसके भेदों की चर्चा अलग से की है। प्रमुख भाषाओं में संस्कृत महाराष्ट्री प्राकृत और अपभ्रंश केवल तीन का नाम लेना ध्यान देने योग्य तथ्य है। ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से आधुनिक भाषाओं के आरंभ से पूर्व भारतीय आर्य भाषाओं के इतिहास में यही तीन महत्वपूर्ण मंजिलें हैं। किंतु कुछ विद्वानों को भारतीय आर्य भाषा के विकास में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश वगैरह इतनी मंजिलें गिनना असंगत प्रतीत होता है। उनका कहना है कि जितनी मंजिलें हमारे सामाजिक विकास ने भी तय नहीं की थीं, अल्पविराम, उससे अधिक मंजिलें भाषा के इतिहास में दिखाना अवैज्ञानिक है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन की तुलना में भाषा संबंधी परिवर्तन बहुत मंद होता है। उनके अनुसार हिंदी भाषा के जन्मकाल को इतनी मंजिलों के बाद रखने का एक कारण सामंती और साम्राज्यवादी भाषा शास्त्रियों में आम जनता के प्रति घृणा भाव भी था। प्राकृत और अपभ्रंश को लोकभाषा मानकर अध्ययन करने वालों के मन में आम जनता के प्रति घृणा भाव था या प्रेम भाव, इसका निर्णय तो सामान्य जन ही करेंगे। लेकिन इन तमाम मंजिलों को तोड़कर संपूर्ण भारतीय आर्य भाषा को हिंदी घोषित कर देने से आम जनता के प्रति प्रेम किस प्रकार प्रकट हो जाता है, ये समझ में नहीं आता। यदि भाषा परंपरा की एकता और प्राचीनता पर जोर देना ही जनता के प्रति प्रेम प्रकट करने का प्रमाण है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जिन्होंने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि अनेक मंजिलें गिनाई हैं, उन्होंने भी इनमें एक सूत्रता की तरह एक भाषा परंपरा भारतीय आर्य भाषा को स्वीकार किया है। भारतीय आर्य भाषा के सिद्धांत से जनता की भाषा परंपरा की एकता और प्राचीनता दोनों की पुष्टि होती आए। 1. हमारी जातीय भाषा के विकास की समस्या, डॉक्टर शून्य रामविलास शर्मा, लेख संग्रह, सम 01, मार्च 1953, जन प्रकाशन गृह, बम्बई, पेज नंबर 31 है। भारतीय आर्य भाषा के इतिहास में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि विकास क्रम की अनेक मंजिलें गिनाने से भाषा परंपरा की एकता को धक्का नहीं लगता। लेकिन असल सवाल तो संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि मंजिलों की वैज्ञानिकता का है। क्या ये संभव नहीं है कि समाज व्यवस्था के अपरिवर्तित रहते हुए उसकी भाषा में परिवर्तन होता चले? ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक युग 19वीं शती ईस्वी से पूर्व भारतीय समाज का मूल ढांचा बहुत कुछ स्थिर सा रहा। इस ढांचे की नींव ग्राम संगठन है, जिसके ढांचे में पिछले 2000 वर्षों तक किसी प्रकार के मौलिक परिवर्तन का पता नहीं चलता। फिर भी हम देखते हैं कि उत्तर भारत की 16वीं शती की भाषा में पहली शती की भाषा से मौलिक अंतर है। तुलसीदास की भाषा वाल्मीकि की भाषा से बहुत भिन्न है। शब्दकोश में थोड़ा बहुत साम्य भले ही मिल जाए, लेकिन दोनों के वाक्य गठन में महान अंतर है। दोनों के व्याकरण दो हैं, एक हिंदी और दूसरी संस्कृत। इस अंतर को न देखना अथवा देखने से इनकार करना भाषा संबंधी विवेक को पीछ देना है। इससे सिद्ध होता है कि भाषा के विकास संबंधी अपने नियम होते हैं। समाज के स्थिर होते हुए भी भाषा बदल सकती है, और समाज के जल्द बदलते रहने पर भी भाषा अपेक्षाकृत स्थिर रह सकती है। सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे भाषा को प्रभावित करते चलते हैं, लेकिन सामाजिक क्रांति भाषा में सहसा क्रांति नहीं ला सकती। परंपरा निर्वाह संभवतः भाषा में सबसे अधिक दिखाई पड़ता है। इसलिए प्राकृत भाषाओं में अपभ्रंश की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करना अवैज्ञानिक नहीं है। वस्तुतः अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा में महत्वपूर्ण तथा कुछ मौलिक परिवर्तन की सूचना देती है। विद्वानों ने इस तथ्य को लक्षित किया है। संस्कृत के बाद प्राकृत में वैसा परिवर्तन नहीं हुआ जैसा अपभ्रंश में दिखाई पड़ा। महापंडित राहुल सांकृत्यान ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सुबंत, तिदत या शब्दरूप और धातु रूप की शैली में दोनों पाली और प्राकृत ही ने संस्कृत का अनुसरण नहीं छोड़ा, और अपभ्रंश यहाँ आकर भाषा का असाधारण परिवर्तन हो गया। नए सुबंतों तिनतों की सृष्टि की। राहुल जी आगे लिखते हैं कि वस्तुतः संस्कृत से पाली और प्राकृत तक भाषा विकास क्रमिक या अविच्छिन्न प्रवाह युक्त हुआ, मगर आगे वह क्रमिक विकास नहीं बल्कि विच्छिन्न प्रवाहयुक्त विकास जाति परिवर्तन हो गया। उद्धरण, वास्तविकता यह है कि किसी भाषा के विकास सूचक सभी परिवर्तनों का क्रम लिखित रूप में नहीं मिलता, क्योंकि भाषा का निर्माण समाज के दैनंदिन जीवन में एक। हिंदी काव्यधारा अवतरणिका फ्री 01 पेज नंबर 32 होता रहता है, और साहित्य में तो उन छोटे छोटे परिवर्तनों का संचित रूप ही सामने आ पाता है। इसलिए साहित्य में प्रयुक्त भाषाओं के बीच शताब्दियों में कुछ अंतराल मिलते हैं। इन अंतरालों के कारण कभी कभी भाषा में जाति परिवर्तन अथवा गुणात्मक परिवर्तन का भान होने लगता है। राहुल जी ने अपभ्रंश में भाषा का जो जाति परिवर्तन लक्षित किया है, वह संभवतः इसी कारण। विचार करने से स्पष्ट हो जाएगा कि अपभ्रंश तक आते आते भाषा में जिस जाति परिवर्तन का आभास होता है, उसका आरंभ प्राकृत से ही हो चुका था, और शताब्दियों के परिवर्तनों का संचित रूप अपभ्रंश में सहसा पहली बार दृष्टिगोचर हो उठा है। फिर भी इतना अवश्य है कि अपभ्रंश ने संस्कृत व्याकरण के विस्तार को अत्यंत संक्षिप्त करके भाषा के ढांचे को बहुत सरल बना दिया। अपभ्रंश तक आते आते संस्कृत और प्राकृत की तरह शब्द रूप और धातु रूप को रटने से जान बची। विभक्ति चिह्नों की संख्या बहुत घट गई। विभक्तियों के विकारी रूप कारक निर्माण में समर्थ समझे जाने लगे। कारकों के लिए परसग प्रयोग की बहुलता आई। क्रियापदों में तिन्त रूपों की जगह कृदंत रूपों का प्रयोग बढ़ गया। वाक्य विन्यास में शब्दों का स्थान और क्रम भी महत्वपूर्ण हो उठा। इसी तरह की और भी अनेक बातें हुईं जिनसे अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास में विशेष स्थान प्राप्त हुआ। उकार बहुला भाषा। अपभ्रंश की इन्हीं विशेषताओं में से उकारांत प्रवृत्ति की बहुलता भी एक है। भरत मुनि ने सबसे पहले एक उकार बहुला भाषा की सूचना दी। उनके अनुसार हिमवत सिंधु और सौवीर में उकार बहुला भाषा का प्रयोग होता था। विद्वानों ने इस भाषा के विषय में अनुमान किया है कि यह अभिरोक्ति अथवा भाषा अपभ्रंश रही होगी, लेकिन डॉक्टर शून्य परशुराम ल शून्य वैद्य ने विद्वानों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि अपभ्रंश के अतिरिक्त प्राकृत धम्मपद ललित विस्तर और सद्धर्म पुंडरीक जैसे बौद्ध ग्रंथों में भी उकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रवृत्ति की बहुलता इन ग्रंथों में भले ही न हो, परंतु डॉक्टर शून्य वैद्य के अनुसार यह अपभ्रंश की एकदम अपनी विशेषता नहीं है। धम्मपद के प्राकृत रूपांतर में से, जिसका रचनाकाल ईसा की पहली शताब्दी पूर्व अथवा अधिक से अधिक पहली शताब्दी बतलाया जाता है, कहीं से छंद लेकर इस उकारांत प्रवृत्ति को देखा जा सकता है। यहाँ नमूने के लिए प्रथम दो श्लोक दिए जा रहे हैं। 1. हिमवत सिद्धु सौवीरान येन्य देशान समाश्रिता उका बहुला तेषु नित्य भाषा प्रयोजयेत नाट्यशास्त्रम पेज नंबर 33। उजो नाम सो मगु अभय नमु सदिश रधो अकुयनो नमु धमत्र के ही सहतो हिरि तसु अवरमु स्मति स परिवर्ण धमहु सधि ब्रोमि समेदिठि पुरिजवु। उपर्युक्त श्लोकों में मगु और नमु क्रमशः पाली शब्द मग्नो और नाम के रूपांतर हैं, तथा अवरमु धमहु और पुरिजवु क्रमशः अपालम्बो धम्मः और पुरेज्वम के। प्राकृत धम्मपद की दूसरी शती ईस्वी में लिखित प्रति पेशावर के आसपास खोतान के निकट गोश्रिंग अथवा गोशीर्ष विहार में प्राप्त हुई थी। इससे कुछ विद्वानों का अनुमान है कि इस रूपांतर की भाषा पर उस प्रदेश की बोली का प्रभाव निश्चित रूप से होगा, और यह उकारांत की प्रवृत्ति उन्हीं प्रभावों में से एक है। इस अनुमान का समर्थन भरत के नाट्यशास्त्र से भी हो जाता है, क्योंकि हिमवत, सिंधु, सौवीर की ही भाषा को उकार बहुला कहा है, जो प्रदेश प्रायः प्राकृत धम्मपद के रचना स्थान से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। इसी प्रकार ललित विस्तर की संस्कृत में भी स्थान स्थान पर इस उकारांत वृत्ति की झलक मिल जाती है। यहाँ ललित विस्तर के संचोदना परिवर्त से तीन छंद उद्धृत किए जा रहे हैं। पुरी तुम नरवर सुतु नृपु यद्भु नरु तव अभिमुख इस गिर्मवची दद मम इम मही सनगर नगमा त्यजी पद प्रमुदितु न च मनुक शुभितो पुरी तुम नरपति स्वकु द्विज यद्भु गुरुजनी परिचरी न च ध्रुवपुरतो स्थप्येजु द्विज्व बहुजन कुशले च्युतु ततु भगवतु मरुपोनिले पुरी तुम नरवर त्यजिसुतु यद्भू मणि तव प्रपतितु जलधरी विपुले च्युव्येतु क्षप्येतु त्वय महुद्धि लभि तद्धन्मनि दृभ वृषभि। ललित विस्तर में कहीं कहीं क्षेपक भी अवश्य हुआ है, और संचोदना परिवर्त में तो क्षेपक की संभावना सबसे अधिक है। फिर भी विद्वानों का अनुमान है कि ईसा 1. प्राकृत धम्मपद संपादक बरुआ और मित्रा कलकत्ता विश्वविद्यालय 1921 02 ललित विस्तर प्री 165 166 संपादक डॉक्टर 0S0 लेफमान हाल 1902 पेज नंबर 34 की चौथी पांचवी शताब्दी से पहले ही ललित विस्तर का अंतिम रूप स्थिर हो चुका होगा। तात्पर्य ये कि उदाहरणों से उस समय तक उकार बहुला भाषा का व्यापक प्रभाव प्रकट होता है। चूंकि अपभ्रंश में ये प्रवृत्ति बहुत मिलती है, इसलिए अनुमान किया जा सकता है उक्त प्रवृत्ति का दाएं भाग मुख्यतः अपभ्रंश को ही प्राप्त हुआ होगा। अपभ्रंश की ये तथा इनके अतिरिक्त दूसरी विशेषताएं धीरे धीरे ऐतिहासिक विकास के परिणाम स्वरूप आती गईं। अपभ्रंश भाषा किस प्रकार एक छोटे से क्षेत्र की छोटी सी जाति की बोली से विकसित होती हुई समूचे उत्तर भारत की साहित्यिक भाषा हो गई, इसका इतिहास बड़ा मनोरंजक है। अपभ्रंश भाष की आरंभिक अवस्था। अपभ्रंश का जो साहित्य इस समय प्राप्त है उससे भाषा की आरंभिक अवस्था का पता लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वे सभी रचनाएं बड़ी ही प्रौढ़ भाषा में लिखी हुई हैं। इसलिए अपभ्रंश की आरंभिक अवस्था का पता लगाने के लिए संस्कृत अथवा प्राकृत ग्रंथों में प्राप्त उन उद्धरणों की छानबीन करनी होगी जिनकी भाषा में अपभ्रंश के बीज दिखाई पड़ते हैं। नाट्यशास्त्र के 32वें अध्याय में छंदों के उदाहरण देते हुए भरत मुनि ने कुछ ऐसी कविताएं उद्धृत की हैं जिनमें अपभ्रंश की कतिपय विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। 1. मोरल्लउ नचतउ महाग में संभत तट 2. मिहउ हरतु ई जोनह नियच निफे एहु चंदहु 3. ऐसा हस बहु ही इच्छा कान्नउ गर्नु जु उस्सुया कंतम संगया 4. पियवाड़ वायतु उसुवसिंत कालउ पिय कामुको पिय मदन जनतउ 5. बायदी बादी एह पवाही रुसदेव। उपर्युक्त छंदों में उकार प्रवृत्ति तो स्पष्ट है ही, मेह जोन आदि संज्ञा शब्द तथा ये एह जैसे सर्वनाम रूप और मोरुल में उल्लस्वार्थिक प्रत्यय आदि विशेषताएं ऐसी हैं जो अपभ्रंश की आरंभिक अवस्था की सूचना देती हैं, किंतु इनका पाठ ठीक नहीं है, इसलिए निर्मयात्मक रूप से कुछ भी कह सकना कठिन है। फिर भी यदि यह अंश परवर्ती नहीं है तो इन छंदों को अपभ्रंश के बीज रूप में ग्रहण किया जा सकता है। आरंभिक अपभ्रंश का दूसरा नमूना कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक के चतुर्थ अंक में मिलता है। उन छंदों की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है। अधिकांश पंडितों का कहना है कि वे अपभ्रंश छंद कालिदास रचित नहीं हैं, जो एक भविष्यत कहा की भूमिका पू 051 पर डॉक्टर 0 गुणे द्वारा उद्धृत पेज नंबर 35 हो। कालिदास के नाटक में उन ललित छंदों का स्थान पाना कम महत्वपूर्ण बात नहीं है, और दीर्घ परंपरा से उन्हें विक्रमोर्वशीय का एक अंग समझा जा रहा है। ईसा की 5वीं शताब्दी में वैसी भाषा में काव्य का पाया जाना कोई असंभव बात नहीं है। संभव है ये कोई लोकगीत रहा हो जिसके माधुर्य से प्रभावित होकर कवि ने अपने नाटक में उसका उपयोग कर लिया हो। विक्रम और वशीय के वे छंद इस प्रकार हैं। मई जनियन म्य लोअनी निसियरु कोई हरेर जावन नव तदी सामलो धाराहरु रिसेई वन गंधुमाए महुआ गियही कचतेर ही परहुआ रव तूरे ही पसरिय पवन ववेलिर पल्लव नियरु सुललिय विवेह पर रे नचचई कपरारु टू वनहिन पई इयर अभथेमी आख ही मंता एथु रने भमंते जई पई दिठठी सा महुकता सिसम मही म्यं सरिसे वने हंस गई ए चिन्हे जाने हसी आखियु तुझ मई थ्री पर हुआ महुर पलविनी कंती नंदन वन सचछंद भमंती जई पई पियाम सा महदिठी ता आखी महु पर पुठी फोर रे रे हसा की गोविजर गई अनुसारे मई लखिजड़ कई पई सिखऊ ए गई लाल्स सा पई दिठी जहन भरलस फाइव हूं पैन पुच्छिमी अखही गा वरु ललिया पहारे नासिय तरु वरु दूर विनिजिया सास कंती दिठी पिया पई समूह जंती सुर सुंदरी जहन भरलस पीनुट टुंग घन अतनी आय थिर जौवन तनु शरीरी हंस गई आय गनुज जल कान्यमियलोनी भमंते दिठी पई तह विरह समुद्दंत्रे उत्तार ही मई सेवन लये पेक्थिविनु हियाय भावमी जई वही जोय पुन तही पावमी तार अपने अन करिमी निभमती पुन नई मैलमी दाह कंती एट पेज नंबर 36 मोरा पर हुआ हंस विंगम आय अली गर पव सरिय कुर्गम तुझ कारणे रने भमंते को अनहु गुच्छियु माई रोअंते नाइन। इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद अपभ्रंश के एकदम अपने छंद हैं। प्राकृत में इस प्रकार के तुकांत छंदों का प्रयोग प्रायः नहीं हुआ था। ध्वनि और पदगठन दोनों ही दृष्टियों से इनकी भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश के बहुत निकट है, फिर भी इसके कुछ पदों पर प्राकृत का प्रभाव स्पष्ट है। आरंभिक अपभ्रंश के बिखरे हुए उदाहरणों में उद्योतन सूरी कृत कुवलय माला कहा के कुछ अंशों को उद्धृत किया जा सकता है। स्वयं कवि ने अपनी ग्रंथरचना का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो देशी भाषा के लक्षण और धातु जानता है वह विविध वचनों की गाथाओं से संपन्न कुवलयमला पढ़े। जो जानी देसियो हासाओ लखनाई धाव दये आय वयन्य गाहा छेन कुवलयमा पी सोपऊ। देशी भाषाओं में भी निश्चय ही कवि ने अपभ्रंश को विशेष रूप से अपने सामने रखा है, जिसका लक्षण बतलाते हुए उसने कहा है कि अवभ्रंश बोल चाल की ऐसी भाषा है जो संस्कृत और प्राकृत के शुद्ध अशुद्ध पदों की तरंगों से तरंगायत रहती है। सक्काय पाय उभे सुधासुद पय समतरंगत वगैरह आए। इस महत्वपूर्ण ग्रंथ में जहां अपभ्रंश पद्य के नमूने आए हैं वे तो परिनिष्ठित अपभ्रंश के एकदम निकट हैं, जैसे जो जसु मानुसु वलेउ तम जड़ अनुरमेर जई सो जानी जीब्रिव तो तह प्राण लयी अथवा जो नवी विहुरे विसज जन्नऊ धवलऊ कद्धड़ भारू सो गोठ गणमंडनऊ सेस उपजम सारू। इसमें से पहला दोहा एक ग्राम नटी द्वारा गाया है और दूसरा एक गुर्जर पथिक द्वारा। प्रसंग से दोनों की भाषा का भदेशपन पुष्ट हो जाता है। इन पद्यों के अतिरिक्त उक्त ग्रंथ में अपभ्रंश गद्य के भी नमूने मिलते हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अपभ्रंश का जितना भी साहित्य प्राप्त हुआ है उसमें गद्य के नमूने नहीं के बराबर हैं। भनियम मायाइचेन अहो गामा महत्तरा महापावम गए कयम मिथदोस झमनाम ता हम जलियन कुआस्न पविस्मी देह मज्झ पसियह कट्ठाई जलन्व अति तौ भनियम एक किन गाम महत्तरेन। पेज नंबर 37 एक येहु एहु दुम्मनसाहु सवम जेथुजा आरदु तुझ्झनु वंक वलितु पारद्धु एतु प्रयन सुगई भ्रातु वर भ्रांति संप्रतु तौ अनेन भनिय दो तुझ विरिदु धान लवाए सो लनपडे एतु प्रई दुथट मन मोह लुधू तुन संप्रति व्रोलतु एतु एतु प्रारद्ध भल्लडम तौ अनेन भनियन चिर जराजुन देहिन तीन एत सुगझती किर सुवन एव ऐसान मोह गतु कहु पाव मितस्वांचन कामाल्ह व्रत धरने एतु पाव तुझे पनाहिया तौ सयल द्रंग सामिना भनियन जैत महा मयहरेन चार धवल वाहन धवल देह सिरी भ्रमेति जा विमल जल धवल उज्ज्वल सा भदारी यति गंग प्रावेसी तुह मित्र द्रोज झूतो नाम सुगझती मायादित्य और ग्राम महत्तरों के इस कथोपथन में जितना अंश कथोपथन का है वह तो अपभ्रंश भाषा में है और शेष विवरण प्राकृत भाषा में। जहां तक तद आदि दंत्य ध्वनियों के परिवर्तन का संबंध है अनियमित है और शौरसेनी ध्वनि समूह ने प्रभावित प्रतीत होता है। वैश्वन से वैसान होने में जो है का पई हो गया है वह ध्यान देने योग्य ठेठ अपभ्रंश का लक्षण है। इसके अतिरिक्त एहू दुम्मन साहू आदि प्रयोग अपभ्रंश के अपने हैं। कुवलयमला का दूसरा उदाहरण इससे भी अधिक मनोरंजक तथा भाषा के अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कथा का नायक राजकुमार मथुरा के एक अनाथ मंडप में पहुंचकर वहां के दीन हीन कोड़ी लूले आदि रोगग्रस्त गंवार लोगों से किस प्रकार बातचीत करता है इसका बड़ा ही सजीव चित्रण उद्योतन सूरी ने किया। एक सयल पुहिमंडलम परिबिम्यून संपत्तो महुराउरिये यत एकम्मी अनामंडवे पवितो अवि य तत्व ताव मिलियाले कोढ्य वल्ख खये दीन दुग्गय अंधले पंगुले मंदुले मधय वामान्य छियन नासय तोडिया कन्य छिंथय तडिय कप्पडिय देविय तिथ्यतिय लेहाराय धम्मिय गुगुलिय भोया की चा बहुना जो माओ पियु रुठेलऊ सोसो सफवो वी तत्थ मिलियेलवती ताहा चा तेत्थु मिलियेले सह समाने एक केक महा आलापयता भो भो कयही तिथे दे वे वा गयाह कैरा वाही पावम वा पिट्टई अति दो एक किन भनियन अमुक का वानारसी कोधेही तेम वानारसी गयान कोधु फिट्टई अति तीन अनेन भनियन हूं कहियो वृतुंतऊ तेन जंपियलऊ कहीं कोध कहीं वानारसी मूलथानु भदारु कोधी जे दे उद्दाली लोअहू उद्धरण चिन्ह पेज नंबर 38 चार अनेन भवियन रे रे जय मूलथानु दे उद्दालिज कोधिमता पुनु कायकज्जु अपानु कोधी अल्लव अच्छई पांच अनेन भनियन जा अन कोधियलव अच्छईता अन कायकज्जु महाकालु भडारट छम्मास सेवान कुनी जेन सुलहेज जे फिट्टई छे अनेन भनियन काय इमेन जत्थ चिरपरूद पाव फिट्टई तुभ्य उदिसहतित उद्धरण चिन्ह सात अनेन भनियन प्रयाण वडपयह चिरपरूद पायवी हथवी फिट्टमती आठ अनेन भनियन अरे पाव पुच्छिया पाय साही नौ अनेन भनियन खेदु मेलहम जयी परमाय पियव हकेन पिमहा पावई गंगासंग में पहायह भैरव भदार पदियह पासई अति उद्धरण चिन्ह शूरसेन प्रदेश के केंद्र मथुरा में स्थित अनाथालय के लोगों द्वारा शौरसेनी प्राकृत न बोलवाकर अपभ्रंश में बातचीत कराना ध्यान देने योग्य है। निःसंदेह भाषा पर प्राकृत का यत्र तत्र प्रभाव दृष्टिगोचर होता है किंतु ध्वनि में उकार प्रवृत्ति और पदों में प्राकृत विभक्तियों के निखरे हुए रूप भाषा की गति को अपभ्रंश की ओर उन्मुख बतलाते हैं। इन बातों के अतिरिक्त उपर्युक्त उद्धरण के शब्द समूह में ठेठ देशी शब्दों का बाहुल्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। आरंभिक अपभ्रंश के ये सभी बिखरे हुए उद्धरण मोटे तौर से ईसा की तीसरी शताब्दी से लेकर आठवीं शताब्दी तक के हैं। इनसे स्पष्ट है कि उस समय तक अपभ्रंश की ध्वनियों और पदों का रूप स्थिर नहीं हो सका था। कहीं तो उनमें प्राकृत के रूपों की परिपाटी का पालन दिखाई पड़ता है और कहीं सरलीकरण की नई दिशा की ओर प्रयत्न। स्पष्ट रूप से इसका आधार मुख्यतः शौरसेनी प्राकृत है। इसका कारण शायद ये हो कि इनमें से लगभग सभी उद्धरण शूरसेन प्रदेश तथा उसके आसपास के क्षेत्र के हैं। संभव है दूसरे स्थानों से अन्य सामग्री प्राप्त होने पर किसी और आधार का पता चले। अब विचारणीय बात यह है कि वह कौन सी बोली थी जिसका आश्रय लेकर शौरसेनी अथवा महाराष्ट्री प्राकृत अपभ्रंश भाषा के रूप में विकसित हुई। पश्चिमोत्तर भारत की बोली और अपभ्रंश। भरत मुनि ने किसी उकार बहुला भाषा का क्षेत्र हिमवत, सिंधु, सौवीर आदि प्रदेश अर्थात पश्चिमोत्तर भारत बतलाया है। विद्वानों ने इसे आरंभिक अपभ्रंश बोली। एक विशेष अध्ययन के लिए देखिए प्रो शून्य अल्फ्रेड मास्टर द्वारा लिखित निबंध ग्लिनिंग्स फ्रॉम कुबलमला कहा बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज जिल्द 13 खंड 2 और 41 1950-51 E0 पेज नंबर 39 का क्षेत्र प्रमाणित किया है। यदि इसे सच माने तो कहना पड़ेगा कि तीसरी शताब्दी में जो पश्चिमोत्तर भारत की बोली थी वही क्रमशः विकसित होती हुई एक दिन पश्चिमी भारत तथा मध्य देश की साहित्यिक भाषा बन गई। लेकिन उतनी दूर की बोली का प्रसार इन प्रदेशों तक किस प्रकार हुआ और यही नहीं बल्कि वह बोली अपने उन मूल प्रांतों से सरक कर दूसरे क्षेत्रों में किस प्रकार प्रतिष्ठित हो सकी, इन प्रश्नों का समाधान आवश्यक है। आभीरी बोली और अपभ्रंश। पंडितों ने इसका समाधान करते हुए दंडी के प्रमाण पर कहा है कि अपभ्रंश मूलतः आभीरी बोली थी और महाभारत के अनुसार ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी तक पश्चिमोत्तर भारत में आभीर जाति के पाए जाने का उल्लेख मिलता है। नकुल के प्रतीचि विजय प्रसंग में आभीरों को सिंधु के किनारे रहने वाला कहा गया है। शल्यपर्व में बलदेव की तीरथ यात्रा के संदर्भ में आता है कि राजा ने उस विनाशन में प्रवेश किया जहां शूद्र आभीरों के कारण सरस्वती नष्ट हो गई। दो पश्चात जब अर्जुन वृष्णियों की विधवाओं को लेकर द्वारका से चलते हुए पंचनद में प्रवेश करते हैं तो दस्यु लोभी और पापकर्मी आभीर हमला करके महिलाओं को छीन ले जाते हैं। तीन इन प्रसंगों के अतिरिक्त द्रोणाचार्य के सुपर्ण व्यूह में भी उनके दर्शन होते हैं। स्वाभाविक है कि सरस्वती के पास विनशन और पंचनद में आ बसने वाली इस दुर्धर्ष आभीर जाति ने अपनी बोली का भी प्रभाव प्रकट किया हो। किंतु ये बात कल्पना से परे प्रतीत होती है कि बाहर से आने वाली जाति ने उस प्रदेश की पूर्ववर्ती भाषा को मिटाकर अपनी कोई नई भाषा चला दी हो। विजेता जाति की भाषा पराजित जाति की भाषा का स्थान से ही ले ऐसा अनिवार्य नहीं है और उस दशा में तो इसकी संभावना और भी संदिग्ध हो उठती है। जब पराजित जाति विजेता की अपेक्षा सुसंस्कृत हो तथा उसकी भाषा भी अधिक समृद्ध हो। आभीरों की तुलना में पंचनद की पूर्ववर्ती जाति और भाषा की श्रेष्ठता स्वयं सिद्ध है। इसलिए जैसा कि भारत में बाहर से आने वाली सभी जातियों के विषय में सच है, आभीर जाति भी यहां आकर वर्णाश्रम व्यवस्था के भीतर आ गई और इस तरह उसने यहां की स्थानीय बोली भी ग्रहण कर ली। इतना जरूर है कि आभीरों ने उस क्षेत्र की बोली में अपने कुछ निजी शब्दों का मिश्रण कर दिया और कुछ दूर तक उसकी ध्वनियों को प्रभावित किया। परंतु इससे आगे बढ़ना गलत है। दो जातियों एक पर्व 2 अध्याय 32 श्लोक 101 2 पर्व 9 अध्याय 37 श्लोक 1 3 पर्व 16 अध्याय 7 श्लोक 44-47 4 पर्व 7 अध्याय 20 श्लोक 61 डॉक्टर शून्य गुणे भविष्यत कहा कि भूमिका प्री शून्य 531 पेज नंबर 40 की भाषाओं के मिश्रण से सर्वथा नई किसी तीसरी भाषा का जन्म नहीं होता। बल्कि उन दोनों में से विजयी भाषा का ही व्याकरण आधारभूमि का काम करता है, दूसरी अपनी कोई बोली भाषा उसमें विलीन हो जाती है। तात्पर्य ये कि यदि आभीरो रही होगी तो पंजाब क्षेत्र की भाषा में विलीन हो गई होगी। फिर भी यह प्रश्न तो रह ही गया कि पश्चिमोत्तर भारत की बोली मध्यदेश और पश्चिमी भारत की साहित्यिक भाषा किस प्रकार बनी। इसके समाधान स्वरूप विद्वानों ने आभीर जाति के प्रसार के ऐतिहासिक आंकड़े दिए हैं। ईसवी सन की दूसरी शताब्दी में काठियावाड़ में आभीरों के रहने की बात कही जाती है। इसका आधार यह है कि काठियावाड़ के सुंद नामक स्थान में प्राप्त महाक्षत्र रुद्रदामन के एक अभिलेख उसके एक आभीर सेनापति रुद्रभूति के दान का उल्लेख है। विद्वानों के अनुसार उक्त अभिलेख का समय 181 ई० है। महाक्षत्र की सेना में एक आभीर सरदार का होना समूचे काठियावाड़ में आभीरों के निवास का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इससे अधिक यह अनुमान लग सकता है कि शायद शकों से आभीरों का कुछ संबंध स्थापित हो गया हो और इस तरह आभीरों ने शक्ति संचित करके अपना प्रसार किया हो। इसे आभीर जाति के भावी विस्तार की भूमिका मात्र माना जा सकता है। एंथवन ने ईसा की तीसरी शताब्दी के अंत में काठियावाड़ में आभीरों के आधिपत्य को प्रमाणित करते हुए नासिक अभिलेख 300 ई० के आभीर राजा ईश्वरसेन की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग वाले लौह स्तंभलेख 360 ई० के अनुसार आभीर जाति उस समय गुप्त साम्राज्य की सीमा पर राजस्थान मालवा दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिमी प्रदेशों में बटी हुई थी। पुराणों के अनुसार आंध्रभृत्यों के बाद दक्कन आभीर के ही हाथ आया और छठी शती के बाद से निकल गया। उस समय ताप्ती से देवगढ़ तक का प्रदेश इन्हीं के नाम पर विख्यात था। जॉर्ज इलियट के अनुसार 8वीं शताब्दी में जब काठी जाति ने गुजरात में प्रवेश किया तो उसने देखा कि उसका अधिकांश आभीरों के हाथ में है। एंथवन ने सिद्ध किया है कि खानदेश में आभीरों का स्थायी निवास महत्वपूर्ण तथ्य है। 15वीं शताब्दी में असीरगढ़ का किला आसा अहीर द्वारा स्थापित बताया जाता है। इधर मध्यदेश में मिर्जापुर जिले का ऐरोरा आभीरों के ही नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। इन ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि एक समय इस दुर्धर्ष जाति ने बड़ी तेजी से समूचे उत्तर भारत में छा जाने का उद्योग किया था। यदि इस प्रवाह के साथ 1D0R0 भंडारकार इंडियन एंटिक्वेरी 1911 ई० प्री 0162R0 ई० एंथवन ट्राइब्स एंड कॉस्ट्स ऑफ बॉम्बे भाग 1 प्री 0121 गुने द्वारा भवी 0 की भूमिका में उद्धृत 3 सप्लीमेंटरी ग्लासरी S0B0 अहीर पेज नंबर 41 अपभ्रंश का भी प्रसार हुआ हो तो कोई आश्चर्य नहीं। संभव है दंडी जैसे आचार्य ने इस जाति के आतंक और प्रभाव को देखकर ही समस्त ग्रामीण बोली के लिए आभीरादी गिरा संज्ञा का प्रयोग कर दिया हो, क्योंकि भाषाएं या तो प्रभावशाली जाति के नाम से जानी जाती हैं अथवा उस भाषा भाषी प्रदेश के नाम से। इसका मतलब इतना ही हो कता है कि अपभ्रंश बोलने वाले लोगों में आभीरों की बहुलता थी। यह नहीं कि अपभ्रंश आभीर जाति के साथ बाहर से लाई गई कोई विदेशी बोली थी। अपभ्रंश को आभीरी बोली मानने का विरोध याकोबी ने भी किया है। याकोबी के विचार से यदि अपभ्रंश आभीरों की बोलचाल की भाषा होती तो दंडी ने बहुवचन अपभ्रंशा शब्द का प्रयोग किया होता। एकवचन अपभ्रंश शब्द से पता चलता है कि अपभ्रंश साहित्यिक भाषा के लिए एक सामान्य नाम था जिसमें कुछ लोक बोलियों का भी योगदान था। इस धारणा की पुष्टि में याकोबी ने नमिसाधु का ये कथन उद्धृत किया है, अभीरी भाषा अपभ्रंशस्था कथिता क्वचिमाग्ध्यांपि दृष्टा। इस कथन से स्पष्ट है कि आभीरी भाषा अपभ्रंश नहीं थी। अपभ्रंश ढांचे संपूर्ण आभीरी भाषा ने अपना स्थान नहीं बना लिया था, बल्कि आभीरी भाषा के केवल कुछ तत्व ही उसमें मिश्रित हुए थे। आभीरादि में आदि कौन, यहाँ दंडी के आभीरादि कथन में आदि के द्वारा किन जातियों की ओर संकेत है, इस पर भी ध्यान जाना स्वाभाविक है। अनुमान है कि उनमें से एक जाति गुर्जर अवश्य होगी, यद्यपि गुर्जरों की अपनी बोली गौर्जरी का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, तथापि यह भी तथ्य है कि भड़ोच के गुर्जरों ने अपभ्रंश को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया है। भंडारकर और जैक्सन की खोजों से पता चलता है कि छठी शताब्दी ईस्वी में गुर्जरों ने गुजरात और भड़ोच को जीता। उनकी मुख्य शाखा की राजधानी भीनमाल थी और 10वीं शताब्दी के मध्य तक उन्हें चालुक्यों के कारण भीनमाल छोड़ने को विवश होना पड़ा। परिणाम स्वरूप 958 ई० में 18,000 गुर्जरों ने सामूहिक रूप से एक साथ भीनमाल का इलाका छोड़कर देशांतर किया। 12 गुजरात नाम इन्हीं के कारण पड़ा। ऐसी दशा में स्वाभाविक है कि इन्होंने उस समय की पश्चिमी भारत की बोली अपभ्रंश को भी प्रभावित और प्रसारित करने में योग दिया हो। एक इंट्रोडक्शन टू द भविष्यत कहा 12 डॉक्टर शून्य एस शून्य एन शून्य घोषालकृत अंग्रेजी अनुवाद जर्नल ऑफ द ओरिएंटल इंस्टीट्यूट बड़ौदा 1955 2 डी शून्य आर शून्य भंडारकर ऑन गुर्जर जे शून्य बी शून्य बी शून्य आर शून्य ए शून्य एस शून्य जिल्द 21 प्री 412 1902 ई शून्य एम शून्य ती शून्य जैक्सन बॉम्बे गैजेटियर जिल्द 1 भाग 1 प्री 465 66 एन शून्य बी शून्य दिवेतिया द्वारा गुजराती लैंग्वेज एंड लिटरेचर जिल्द 1 प्री 035 पर उद्धृत पेज नंबर 42 क्या अपभ्रंश मूलतः पंजाब राजस्थान और गुजरात की बोली थी। संभव है आभीरों और गुर्जरों के अतिरिक्त ऐसी ही अन्य गोपालक जातियों ने अपभ्रंश के प्रसार में योग दिया हो। इस तरह यदि अपभ्रंश मूलतः पश्चिमोत्तर भारत की बोली न भी रही हो तो भी पश्चिमी भारत की बोली से उसका संबंध होने की कल्पना की जा सकती है। यहाँ राजशेखर के कथन को ध्यान में रखना आवश्यक है कि अपभ्रंश सकल मरुभूमि टकर और भादानक देशों में प्रयुक्त होती है। भाषा वैज्ञानिकों ने प्रायः अपभ्रंश से राजस्थानी और गुजराती का घनिष्ठ संबंध दिखलाया है। यद्यपि सीधे अपभ्रंश से पंजाबी का साम्य दिखाने की ओर लोगों का ध्यान बहुत कम गया है, तथापि राजस्थानी और पंजाबी की निकटता के उदाहरण प्रायः दिए जाते हैं। यदि यह सच है तो इन क्षेत्रों में बहुतायत से रचे हुए अपभ्रंश साहित्य की भाषा का यहाँ की बोली से शक्ति ग्रहण करना स्वाभाविक है। अपभ्रंश का अधिकांश साहित्य इसी क्षेत्र के प्रमुख नगरों और जैन भंडारों में प्राप्त हुआ, जैसे है अहमदाबाद जैसलमेर पाटन आदि। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि अपभ्रंश के अधिकांश कवि उसी क्षेत्र के रहने वाले थे अथवा उन्होंने इसी क्षेत्र में अपने साहित्य की रचना की। धनपाल हेमचंद्र सोमप्रभ हरिभद्र जिंदत आदि ने गुजरात में, देवसेन ने मालवा में, रामसिंह ने राजपूताना तथा अब्दुल रहमान ने मुल्तान में अपने ग्रंथ रचे। फिर भी डॉक्टर शून्य सुनीति कुमार चटर्जी जैसे भाषा वैज्ञानिक का विचार है कि पश्चिमी या शौरसेनी अपभ्रंश शूरसेन या मध्यदेश की चालू बोली के आधार पर मुख्यतया बनी थी। उनके अनुसार इधर राजस्थान गुजरात तथा पंजाब की और उधर कौशल की अपभ्रंश या अंतिम युग की प्राकृत का उस पर प्रभाव भर पड़ा था। 12 लेकिन डॉक्टर शून्य चटर्जी ने उसी पुस्तक में अपने उक्त मत के विपरीत विचार प्रकट करते हुए कहा है कि शौरसेनी अपभ्रंश की भाषा प्रारंभ ही से किसी खास प्रांत की अधिकृत लौकिक कथ्य या चालू भाषा नहीं था। यह भाषा मुख्यतया गुजरात राजस्थान अंतर्वेद तथा पंजाब में प्रचलित अपभ्रंश बोलियों के आधार पर स्थापित एक मिश्रित साहित्यिक भाषा या शैली ही थी।
3।
यही नहीं, डॉक्टर शून्य चटर्जी ने उसी प्रसंग में अत्यंत प्राचीन काल से सौराष्ट्र और शूरसेन की बोली में अंतर दिखलाने की चेष्टा की है, और अपभ्रंश काल में इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने शौरसेनी अपभ्रंश से भिन्न एक अनुमानित सौराष्ट्र अपभ्रंश का अस्तित्व बतलाया है। यदि यह सच है तो अपभ्रंश को दो बोलियों का मिश्रण मानना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। 1. साप्रंश प्रयोगा सकल मरुभुवष्टक का भादान काश्च। 2. राजस्थानी भाषा प्री 0601-3 राजस्थानी भाषा प्री 0351 पेज नंबर 43। वास्तविक ये है कि अपभ्रंश काल में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, शूरसेन तथा उत्तरी महाराष्ट्र की भाषा में कोई मौलिक व्याकरणिक भेद न था। थोड़े से उच्चारणगत ध्वनिपरक भेदों तथा कतिपय व्याकरणिक विशेषताओं को छोड़कर भाषा का ढांचा सर्वत्र बहुत कुछ एक ही था। ये तथ्य प्राकृत व्याकरणों द्वारा निरूपित विभिन्न प्राकृतों के लक्षणों से पुष्ट होता है, जहां केवल थोड़े से ध्वनि विकारों की विशेषताएं अंकित करके शौरसेनी, मागधी, पैशाची आदि को शेष प्राकृतवत कहकर चलता किया गया है। इसीलिए कुछ विद्वानों का अनुमान है कि प्राचीन व्याकरणों द्वारा निरूपित महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी आदि भेद भौगोलिक नहीं हैं। सारांश ये है कि अपभ्रंश बोलने वाले लोगों में आभीर, गुर्जर आदि चाहे जिस जाति की प्रधानता रही हो, परंतु भौगोलिक दृष्टि से वह प्रायः पश्चिमी भारत की बोली थी। नगर अपभ्रंश अर्थात परिनिष्ठित अपभ्रंश इसी बोली का साहित्यिक रूप था। आज अपभ्रंश संज्ञा से लोगों को पश्चिमी अपभ्रंश का ही बोध होता है। कुछ लोग उसे शौरसेनी अपभ्रंश भी कहते हैं, परंतु शौरसेनी अपभ्रंश कहते समय मन में ये स्पष्ट रहना चाहिए कि वह अकेली शौरसेनी प्राकृत की उत्तराधिकारिणी नहीं थी। डॉक्टर शून्य ग्रियसन का भी यही मत है। साहित्यिक अपभ्रंश मूलतः और मुख्यतः पश्चिमी भारत की बोली होती हुई भी 8वीं से 13वीं शताब्दी तक समूचे उत्तर भारत की साहित्यिक भाषा थी। एक ओर इसमें बंगाल के सरह और कन्ह जैसे सिद्ध कवियों ने द्वयकोशी की रचना की और मिथिला में ज्योतिरीश्वर तथा विद्यापति ने स्थानीय बोली का पुट देकर साहित्यिक अपभ्रंश में ग्रंथ लिखे, तो दूसरी ओर मुल्तान में अब्दुल रहमान का भी कंठ इसी में फूटा। दक्षिण में मान्यखे के पुष्पदंत ने इसी वाणी को अपने हृदय का हार बनाया, एससीए के कनकामा मुनि ने इसी में चरित गाया और महाकवु स्वयंभू ने रामायण की रचना के लिए इसी भाषा को चुना। विचारणीय बात है कि पश्चिमी भारत की बोली को संपूर्ण उत्तर भारत की साहित्यिक भाषा होने का गौरव किस प्रकार प्राप्त हुआ। वह कौन सी शक्ति है जिसके कारण उत्तर भारत की बोलियां मिल जुलकर 9वीं-10वीं शताब्दी के आस पास एक विशाल राष्ट्रीय अथवा जातीय भाषा के रूप में केंद्रीभूत हो उठी। अपभ्रंश के उत्थान का ऐतिहासिक कारण। यह एक भाषावैज्ञानिक तथ्य है कि राजनीतिक और आर्थिक केंद्रोन्मुखता के कारण विविध स्थानीय बोलियां एक विशाल राष्ट्रीय भाषा के रूप में ढल जाती हैं। 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र पर दृष्टि डालने से मालूम होता है कि बंगाल में पाल, कान्यकुब्ज में प्रतिहार तथा मान्यखे में राष्ट्रकूट राजाओं ने एक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जिल्द 1 भाग 1 प्री 0125 की पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 44 अपना आधिपत्य जमा लिया था और इनमें कान्यकुब्ज के लिए आपसी संघर्ष बराबर चल रहा था। भौगोलिक दृष्टि से कान्यकुब्ज का राज्य उत्तर भारत का केंद्र था और राजनीतिक दृष्टि से भी प्रतिहारों ने उस केंद्र की सार्थकता प्रमाणित कर दी थी। उनके छत्र के नीचे अनेक सामंत थे, राजपूताना, गुजरात तथा मध्य भारत से कान्यकुब्ज तक सारा उत्तर भारत बहुत कुछ एक सूत्र में बंधा हुआ था। इतना होते हुए भी कान्यकुब्ज के दरबार में वहां की देशभाषा को वैसा राज्याश्रय प्राप्त न था जैसा संस्कृत को प्राप्त था। इनकी अपेक्षा पाल और राष्ट्रकूट राजा देशभाषा के कहीं अधिक संरक्षक थे। सरह कान्ह आदि 84 सिद्ध कवि पालों के ही शासन काल में हुए। उधर पुष्पदंत और स्वयंभू जैसे अपभ्रंश कवियों की शक्ति का प्रस्फुटन राष्ट्रकूटों की ही छत्रछाया में हुआ। इसलिए आरंभ में तत्कालीन बोलियों को अपभ्रंश के रूप में केंद्रित करने और इस तरह उसे विकसित करने का श्रेय मुख्यतः राष्ट्रकूटों को है। राष्ट्रकूट राजा लाट सौराष्ट्र से लेकर कान्यकुब्ज तक धावा बोलते रहते थे, यहाँ तक कि लाट और सौराष्ट्र तो बहुत दिनों तक उनकी एक शाखा के अधिकार में भी था। राहुल जी के अनुसार दिल्ली के पास से पुष्पदंत को तथा कोसल से स्वयंभू को अपने यहाँ ले जाने का श्रेय इन्हीं के आक्रमण को है। स्वयंभू राष्ट्रकूट ध्रुव 780-94 के किसी अमात्य रया धनंजय के साथ दक्षिण गए और पुष्पदंत कृष्ण तृतीय के मंत्री भरत के साथ राष्ट्रकूटों के अपने राज्य क्षेत्र की भाषा जो भी रही हो, परंतु आरंभ में उनका संबंध पश्चिमी भारत राजस्थान और सौराष्ट्र से था, इसलिए उनकी अपनी भाषा पश्चिमी अपभ्रंश ही प्रतीत होती है। प्रतिहारों के विपरीत राष्ट्रकूट राजा जैन थे और उनकी प्रजा अधिकांश संपन्न समाज जैन वैश्य थी, इसलिए उन्होंने स्वभावत ही जैनों द्वारा बोली और लिखी जाने वाली भाषा अपभ्रंश को संरक्षण दिया। उस समय पश्चिम भारत का अधिकांश वाणिज्य जैन वैश्यों के हाथ में था। धीरे धीरे गुजरात इस वाणिज्य का केंद्र हो चला था, इसलिए इस क्षेत्र की भाषा का राष्ट्रीय भाषा के रूप में उत्थान स्वाभाविक ही था। आगे चलकर जब 10वीं शताब्दी का अंत होते मान्यखे के राष्ट्रकूट गतश्री होने लगे तो गुजरात में सोलन की चालुक्यों की शक्ति प्रबल हो उठी, जिसमें सिद्धराज जयसिंह तथा कुमारपाल जैसे जैन मत के पोषक और अपभ्रंश साहित्य के उन्नायक उत्पन्न हुए। सिद्धराज स्वयं तो जैन न था, फिर भी उस पर जैन मंत्रियों का पर्याप्त प्रभाव था। अपभ्रंश के प्रसिद्ध विद्वान तथा जैन मत के आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद सूरी को संरक्षण देने का श्रेय सिद्धराज को ही है। साहित्य सृजन के लिए हेमचंद्र को धन और जन की कितनी सुविधाएं राज्य की ओर से दी गई थी। एक हिंदी काव्यधारा अवतरणिका प्री शून्य 25-27-1 पेज नंबर 45। यह उस युग में किसी के लिए भी ईर्ष्या का विषय हो सकता था, और कुमारपाल तो प्रायः हेमचंद्र द्वारा जैन मत में दीक्षित ही हो गया था। उसकी अमार घोषणा इतिहास में प्रसिद्ध है, कुमारमाल ने अपभ्रंश को यथेष्ट संरक्षण दिया। इस तरह मान्यखे के राष्ट्रकूटों के बाद पाटन के सोलन की दूसरे राजा हुए, जिन्होंने अपभ्रंश भाषा और साहित्य के उत्थान में बहुत बड़ा कार्य किया। सोलंकियों के शासन काल में गुजरात का वैभव पराकाष्ठा पर था। वाणिज्य और संस्कृति दोनों में वह भारत का सिरमौर हो रहा था। स्वाभाविक था कि ऐसे राज्य की साहित्यिक भाषा उस समय की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो। यद्यपि उसी समय कान्यकुब्ज में प्रतिहारों को हराकर महाप्रतापी गाहड़वाल सिंहासनासीन हुए थे, जिनमें गोविंद चंद्र 1093-1134 और उसके पौत्र जयचंद्र 1170-93 जैसे चक्रवर्ती राजा हुए, तथापि उनके द्वारा लोक भाषा को कोई प्रश्रय नहीं मिला। उनके दरबार में संस्कृत का ही सम्मान था। श्रीहर्ष जैसे संस्कृत के पंडित कवि से गाहड़वालों का दरबार सुशोभित था। ऐसे सुसंस्कृत दरबार में भला लोक भाषा के कवि की कहाँ पूछ। गाहड़वाल राजाओं ने नी संदेह महान सांस्कृतिक कार्य किए, लेकिन उन्होंने अपने समय की जीवंत लोक भाषा को छोड़कर साहित्य रूढ़ परम परिणत और विकास रुद्ध संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया, या यो कहें कि उसे अपने अलंकरण का साधन बनाया। शायद ब्राह्मण धर्म के प्रबल समर्थक होने के कारण गाहड़वालों ने जैनों के द्वारा प्रवर्धित अपभ्रंश को प्रश्रय देना उचित नहीं समझा। कथा कहानियों और किंवदंतियों से मालूम होता है कि अंतिम दिनों में परवर्ती गाहरवालों ने लोक भाषा की ओर ध्यान देना आरंभ किया था। जयचंद्र का महामंत्री विद्याधर लोक भाषा का अच्छा कवि था। इधर दामोदर पंडित द्वारा लिखी हुई उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक एक पुस्तक प्राप्त हुई है, जिसे उक्त पंडित ने गाहरवाल राजाओं को लोक भाषा में संस्कृत पढ़ाने के लिए लिखा था। दो परवर्ती गाहरवालों के लोक भाषा प्रेम के ये प्रमाण हैं। लेकिन ये प्रेम तो तब पैदा हुआ जब अपभ्रंश अपना कार्य पूरा कर रही थी और आधुनिक देशभाषाएं अंकुरित हो चली थी। मतलब ये कि गाहरवालों ने अंत तक अपभ्रंश को राज्याश्रय नहीं दिया, इसलिए उस समय सांस्कृतिक केंद्र कान्यकुब्ज न होकर पाटन रहा, क्योंकि वह उभरती हुई नई संस्कृति लोक संस्कृति और लोक भाषा अपभ्रंश का केंद्र था। तत्कालीन राष्ट्रभाषा अथवा साहित्यिक भाषा पर पछाही प्रभाव का मुख्य कारण यही है। 1. प्राकृत पैंगलमु प्रबंध चिंतामणि पुरातन प्रबंध संग्रह। 2. डॉक्टर शून्य मोतीचंद संपूर्णानंद अभिनंदन ग्रंथ पेज नंबर 46। उपर्युक्त राजनीतिक घटनाओं के वर्णन से यह न समझना चाहिए कि अपभ्रंश को साहित्यिक भाषा बनाने का श्रेय केवल कुछ राजाओं को है। किसी भाषा को बड़ी छोटी करना किसी राजा के बूते की बात नहीं है। भाषा का मूल स्रोत तो लोक समाज ही है और उसे यथेष्ट रूप देने की शक्ति भी उसी लोक के हाथ में है। फिर भी उस युग में राजकीय अथवा सांप्रदायिक संरक्षण के अभाव में लोक द्वारा रची हुई अनेक रचनाएं सुरक्षित न रह सकीं। इसलिए अपभ्रंश के उन्नयन में राजकीय और सांप्रदायिक संरक्षण की चर्चा करना उसे अनुचित महत्व देना नहीं है। इसके अतिरिक्त तत्कालीन राजाओं ने राजनीतिक और व्यावसायिक केंद्रों के निर्माण में भी बहुत बड़ा कार्य किया, जिससे बिखरी हुई लोक बोलियों में केंद्राभिमुख प्रवृत्ति आई। इसे भूलना ठीक नहीं है। यद्यपि अपभ्रंश इतने विस्तृत भूभाग की व्यापक साहित्यिक भाषा रही, फिर भी उसमें स्थान भेद से कुछ विविधता आ ही गई। अपभ्रंश के भेद इस तथ्य की ओर पुराने पंडितों का भी ध्यान गया है। उन्होंने अपभ्रंश के विविध भेदों की चर्चा की है। विष्णुधर्मोत्तर ने देश भेद से अपभ्रंश के अनंत भेद माने हैं। एक तरह से यह उचित ही है, क्योंकि हर 10 कोस पर भाषा का बदल जाना सामान्य जनश्रुति है। फिर भी इस भेद की एक सीमा है। प्राचीन आचार्यों ने इस सीमा का निर्देश किया है। नमिसाधु ने अपभ्रंश के उपनाग आभीर और ग्राम्य तीन भेद बतलाए हैं। माकंडेय ने भी अपभ्रंश के तीन ही भेद माने हैं, परंतु उनके नाम नमिसाधु द्वारा निर्दिष्ट नामों से भिन्न हैं। माकंडेय ने नागर उपनागर और ब्राचर तीन नाम दिए हैं। तीन माकंडेय से ये भी मालूम होता है कि कुछ लोग 27 अपभ्रंश मानते रहे हैं, जिनके नाम हैं ब्राचर लाट वैदर्भ उपनाग नागर बाब अवत्य पांचाल टक मालव कैकय गौड ओद वैव पश्चात्य पांड्य कौंतल सैनहल कालिग्य प्राच्य कर्नाट कांच्य द्राविड़ गौरज आभीर मध्यदेशीय वैताल आदि। परंतु पुराने आचार्यों ने ही इन प्रभेदों का युक्तिपूर्ण ढंग से खंडन कर दिया है, इसलिए इन पर विचार करना व्यर्थ है। विचारणीय वर्गीकरण है नमिसाधु और माकंडेय का। नमिसाधु के विवेचन से मालूम होता है कि उपनाग से उनका तात्पर्य वही है जो माकंडेय का नागर अपभ्रंश से है। सामान्यतः ये परिनिष्ठित अपभ्रंश है, किंतु उपनाग का लक्षण एक देशभाषा विशेषेण तस्या तो नैव विद्यते। विष्णु शून्य 313-2 स चार उपनाग्राभिर्ग्राम्यत्व भेदेन त्रिधोक्तस्तनिरासार्थमुवतम भूरिभेदिति। टीका काव्यालंकार 21-12 3 नागरो ब्राचश्चोपनाग्रश्चेति ते त्रय। 4 अपभ्रंशः परे सूक्ष्म भेदिवान प्रथनमतम प्राकृत सर्वस्व। 7 प्राकृत सर्वस्व 41 पेज नंबर 47। बतलाते हुए एक स्थान पर नमिसाधुने अभूतपि क्वाप्यधो रफः क्रियते का विधान किया है और उदाहरण स्वरूप वाचलवृक्रोवक्रुखीत्यादि को रखा है। संभव है इसे कुछ लोग व्राचा का लक्षण समझें। शेष का लक्षण नमिसाधु ने नहीं बतलाया है। दूसरी ओर मार्कंडेय ने नागर अपभ्रंश के लिए पूरे तीन पाद 17, 18 और 19, ब्राचट के लिए 11 सूत्र और उपनाग के लिए केवल एक सूत्र का विधान किया है। ब्राचट को मार्कंडेय ने सिंधु देशोद्भव कहा है तथा उपनाग को नागर और ब्राचट को संकर। इसके अतिरिक्त मार्कंडेय तथा राम शर्मा ने पूर्वी अपभ्रंश की कुछ व्याकरणिक विशेषताओं का भी निर्देश किया है, यथा एक प्रथमा एक व शून्य हो, प्रथमा बहु व शून्य हो, हु तृतीय एक व शून्य, ए षष्ठी एक व शून्य, हर षष्ठी बहु व शून्य दो, उत्तम पुरुष सर्वनाम एक, मध्यम पुरुष सर्वनाम अन अनह प्रथमा एक व शून्य, हमु द्वितीय एक व शून्य, मो प्रथमा एक व शून्य, तो द्वितीय एक व शून्य, तो तीन क्रिया रूप अन्य पुरुष एक व शून्य। इन लक्षणों से विविध अपभ्रंशों के मौलिक भेदों का पता नहीं चलता। आधुनिक विद्वानों ने अपभ्रंश का वर्गीकरण क्षेत्रीय आधार पर किया है। डॉक्टर शून्य याकोबी ने सनय कुमार चरियु को भूमिका में अपभ्रंश को पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी चार भागों में बांटा है। इस विभाजन का कोई भाषा वैज्ञानिक आधार नहीं प्रतीत होता। संभवतः ग्रंथों के रचना स्थान को दृष्टि में रखकर ही डॉक्टर शून्य याकोबी ने ऐसा वर्गीकरण किया है। अधिक से अधिक पूर्वी अपभ्रंश के बारे में ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर शून्य याकोबी ने पूर्वी प्रदेशों के प्राकृत व्याकरणों और अपभ्रंश रचनाओं में कुछ समानता देखी हो। अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेद, लेकिन ऐसे कमजोर आधार पर किसी भाषा के भेदों का निरूपण करना वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर शून्य याकोबी के वर्गीकरण की त्रुटियों की ओर इशारा करते अभूतपि क्वचित 8141399 हेमचंद्र पेज नंबर 48 हुए डॉक्टर शून्य तगारे ने कहा है कि एक तो कान्हा दोहा कोश तथा सरह दोहा कोश और पुरुषोत्तम रामतर्कवागीश तथा मार्कंडेय जैसे प्राकृत व्याकरणों के अपभ्रंश में कोई विशेष समानता नहीं है। दूसरे उत्तरी अपभ्रंश की केवल एक कृति मिलती है, जिसकी रचना किसी बनिया ने 15वीं शती में की थी। इस तरह उत्तरी और पूर्वी दोनों अपभ्रंश के आधार ठोस प्रमाणित नहीं होते। इस वर्गीकरण के आधार पर डॉक्टर शून्य तगारे ने एक त्रिविध वर्गीकरण का सुझाव दिया है। दो डॉक्टर शून्य याकोबी के वर्गीकरण से इसमें यही विशेषता है कि इसमें उत्तरी अपभ्रंश के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। इस वर्गीकरण का भी आधार रचना स्थान ही है, लेकिन उसकी पुष्टि के लिए डॉक्टर शून्य तगारे ने दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी अपभ्रंशों में भाषा व्याकरण संबंधी भेद भी दिखलाने की कोशिश की है। दक्षिणी अपभ्रंश डॉक्टर शून्य तगारे ने दक्षिणी अपभ्रंश के अंतर्गत पुष्पदंत के महापुराण जस चरियु और नायकुमार चरियु तथा कनकामा के करकंद चरियु काव्यों की गणना की है। कारण स्पष्ट है, इनकी रचना क्रमशः मान्यखे और अस्सये बरार में हुई, इसलिए अनुमान के लिए सहज छूट मिल जाती है कि इन काव्यों की भाषा पर स्थानीय बोलियों की छाप अवश्य पड़ी होगी। इन काव्यों भाषा संबंधी विशेषताओं को अलग करने के लिए डॉक्टर शून्य तगारे ने कुछ ऐसे संज्ञापद और क्रियापद दिखलाए हैं जो परिनिष्ठित अपभ्रंश अथवा पश्चिमी अपभ्रंश के रूपों से अतिरिक्त हैं। जैसे 1. दक्षिणी अपभ्रंश की ध्वनि संबंधी विशेषता यह है कि संस्कृत श का विशेषतः छ होता है, जबकि अन्य अपभ्रंश में क ख्या ख होता है। 2. अकारांत पुल्लिंग शब्द का तृतीय एकवचन में अधिकांशतः अन वाला रूप मिलता है, जबकि परिनिष्ठित रूप एकारांत है। 3. उत्तम पुरुष एकवचन में सामान्य वर्तमान काल की क्रिया मी परक होती है, जैसे कर्मी, जबकि परिनिष्ठित रूप ऊ परक होता है, जैसे करूं। 4. अन्य पुरुष बहुवचन में सामान्य वर्तमान काल की क्रिया नति परक होती है, जैसे करन्ति, जबकि परिनिष्ठित रूप ही परक होता है, जैसे करहीं। 5. सामान्य भविष्यत काल के क्रियापद अधिकांशतः स परक होते हैं, जैसे करिसई, जबकि परिनिष्ठित रूप प्रायः परक होते हैं, जैसे करिसई, जबकि परिनिष्ठित रूप प्रायः परक होते हैं, जैसे करिहई। 6. पूर्वकालिका क्रिया के लिए ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं के बराबर अथवा बहुत कम, जबकि यह प्रत्यय परिनिष्ठित अपभ्रंश में सर्वाधिक प्रयुक्त होता था, जैसे सुनी, चली आदि। 1. ही शून्य, ग्रह शून्य, अप शून्य, भूमिका, प्री शून्य, 6612। वही प्री शून्य 681 पेज नंबर 49। उपर्युक्त विशेषताओं की छानबीन करने से पता चलता है कि ये स्थानगत उतनी नहीं हैं जितनी शैलीगत। डॉक्टर शून्य तगारे ने पुष्पदंत और कनकामा की भाषा में जिन्हें दक्षिणी अपभ्रंश की अपनी विशेषताएं कहा है, वस्तुतः वे बहुत कुछ प्राकृत प्रभाव हैं। विविध वैकल्पिक रूपों में से प्राचीन और नवीन रूपों का अलगाव करके किसी निर्णय पर पहुंचना अधिक लाभदायक होता, लेकिन डॉक्टर शून्य तगारे ने यहां इस विवेक का परिचय नहीं दिया है। पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी प्रमाणित करने के आवेश में डॉक्टर शून्य तगारे की दृष्टि से ये तथ्य ओझल हो गया कि पश्चिमी अपभ्रंश नाम से अभिहित भविष्यत कहा और दक्षिणी अपभ्रंश नाम से अभिहित महापुराण की भाषा में कोई मौलिक अंतर नहीं है। दोनों ही की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है। थोड़ा बहुत जो अंतर है भी वह केवल शैली संबंधी है और रचयिता भेद से इतना सा भेद आ जाना स्वाभाविक है। निष्कर्ष यह निकला कि दक्षिणी अपभ्रंश नामक एक अलग भाषा की कल्पना निराधार और अवैज्ञानिक है। पूर्वी अपभ्रंश के सबसे बड़े समर्थक याकोबी हैं। सनय कुमार चरित की भूमिका में प्राकृत पेंगलम की भाषा पर विचार करते हुए उन्होंने जहां उसकी भाषा को अवहट कहा है, वहीं उस अवहट की आधारभूत पूर्ववर्ती भाषा को पूर्वी अपभ्रंश माना है, जो याकोबी के अनुसार बिहार में प्रचलित थी। याकोबी की इस धारणा के दो आधार थे। एक तो मशून्य हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित तथा सद्य प्रकाशित 1917 बौद्ध गान ओ दुहा, और दूसरा ग्रियसन की यह स्थापना की प्राकृत व्याकरणों को पूर्वी तथा पश्चिमी दो वर्गों में रखा जा सकता है, यथा वररुचि, लंकेश्वर, क्रमदीश्वर, राम शर्मा, मार्कंडेय आदि पूर्वी वर्ग से संबद्ध हैं, तो वाल्मीकि सूत्रों पर आधारित हेमचंद्र, त्रिविक्रम, लक्ष्मीधर, सिंहराज आदि पश्चिमी वर्ग से। इस प्रकार याकोबी के सम्मुख पूर्वी अपभ्रंश के लिए साहित्य तथा व्याकरण दोनों ही क्षेत्रों के प्रमाण उपस्थित थे। यदि प्राकृत व्याकरणों के आपसी मतभेद को ध्यान में रखा जाए तो अपभ्रंश संबंधी दो भिन्न मत दृष्टिगोचर होते हैं। राम शर्मा और मार्कंडेय ने जहां प्राच्य को अपभ्रंश का एक भेद माना है, वहां पश्चिमी वर्ग के पुरुषोत्तम के यहां उनका अस्तित्व नहीं है। यदि याकोबी पूर्वी अपभ्रंश के प्रबल समर्थक हैं तो उसके कट्टर विरोध हैं। प्रो शून्य ज्यूल ब्लॉक। डॉक्टर शून्य शहीदुल्ला की थीसिस सरह और कान्हा के रहस्य गीत का आमुख लिखते हुए प्रो शून्य ज्यूल बल्क ने याकोबी के तत्संबंधी मत का खंडन 1 एस शून्य एन शून्य घोषाल एन एन्क्वायरी इंटू ईस्टर्न अपभ्रंश एशियाटिक सोसाइटी जर्नल जिल्द 22 संख्या 1 1956 ई शून्य। पेज नंबर 50 किया है। उन्होंने प्रश्न उठाया है कि क्या इन दो कोशों की भाषा को याकोबी की तरह पूर्वी अपभ्रंश कहना जरूरी है। और इस प्रश्न का समाधान उपस्थित करते हुए वे आगे कहते हैं कि हाँ, यदि इसका अर्थ वह अपभ्रंश है जो पूर्वी ग्रंथों में प्राप्त होती है तथा जिसमें कुछ पूर्वी प्रभाव है और नहीं, यदि कोई उसमें वास्तविक पूर्वी भाषाओं का आधार ढूंढने की कामना करता है। ज्यूल ब्लॉक अपभ्रंश संज्ञा को एक साहित्यिक भाषा के ही अर्थ तक सीमित रखना चाहते हैं और उनके विचार से सहज बोलचाल की भाषा के लिए अपभ्रंश संज्ञा का प्रयोग अवांछित है, खास तौर से उस भाषा के लिए जिसने मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय बोलियों के बीच संक्रमण का कार्य संपन्न किया था। अंत में डॉक्टर शून्य शहीदुल्ला की इस समझदारी की तायद की है कि उन्होंने सरह और कान्ह की अपभ्रंश को केवल बौद्ध संज्ञा से अभिहित किया है। पूर्वी अपभ्रंश संबंधी इन विभिन्न मतों की समीक्षा करते हुए श्री एस शून्य एन शून्य घोषाल ने यह निष्कर्ष निकाला है कि नागर या पश्चिमी अपभ्रंश से एकदम भिन्न एक पूर्वी साहित्यिक अपभ्रंश के अस्तित्व को स्वीकार करना संभव नहीं है। पूर्वी अपभ्रंश नामधारी भाषा के सही रूप एवं स्थान के बारे में घोषाल ने ग्रियसन का मत उद्धृत किया है। ग्रियसन ने स्पष्ट कहा है कि मार्कंडेय तथा रामशर्मा द्वारा उल्लिखित ओड्री, प्राच्या और गौड़ी अपभ्रंश वस्तुतः उन प्रदेशों में प्रचलित शौरसेनी या पश्चिमी अपभ्रंश ही हैं। इस प्रकार याकोबी की पूर्वी अपभ्रंश भी पूर्वी क्षेत्रों में प्रचलित पश्चिमी अपभ्रंश के ऐसे भेदों से संबद्ध अथवा तद्रूप ही। वस्तुतः याकोबी को भी अपने मत का अनौचित्य स्पष्ट था। संभवतः इसीलिए उन्होंने पूर्वी अपभ्रंश को एक साहित्यिक भाषा ही माना है जो पश्चिमी प्रदेशों से पूर्व में आई थी और पूर्वी क्षेत्र के लिए बहुत कुछ विदेशी थी। गौड़ देश में मागधी प्राकृत प्रचलित थी, जिससे पूर्वी अपभ्रंश अथवा बौद्ध अपभ्रंश का कोई संबंध नहीं है। पूर्वी अपभ्रंश के संबंधी में घोषाल की अपनी धारणा यह है कि पूर्वी प्रदेशों की बोलचाल की भाषा मागधी अपभ्रंश थी, जो मागधी प्राकृत की वास्तविक वंशज थी, और वह मागधी अपभ्रंश पूर्वी साहित्य में व्यवहारित पश्चिमी अपभ्रंश से एकदम भिन्न थी, जैसा कि ग्रियसन, चटर्जी तथा अन्य भाषाविदों ने दिखलाया है। मागधी अपभ्रंश ही बंगला, उड़िया, मगही, मैथिली और भोजपुरिया प्रभृति आधुनिक भाषाओं का मूल स्रोत है। इस प्रकार यदि पूर्वी अपभ्रंश का अर्थ पूर्वी ग्रंथों की साहित्यिक भाषा है, तो निश्चय ही पूर्वी अपभ्रंश नाम, यदि पूर्वी अपभ्रंश का तात्पर्य मागधी अपभ्रंश से है, जो कि आधुनिक पूर्वी बोलियों कोई चीज नहीं है, लेकिन का मूल स्रोत है, तो निश्चय ही उसका अस्तित्व था और वह एक जीवित सत्य की भांति वास्तविक थी। पेज नंबर 51। डॉक्टर शून्य तगारे के पूर्वी अपभ्रंश की मान्यता सरह और कान्ह के दो अकोशों पर आधारित है। इन दो अकोशों की भाषा में परिनिष्ठित अपभ्रंश के अतिरिक्त जो स्थानीय विशेषताएं हैं, उन्हें अलगाते हुए डॉक्टर शून्य तगारे ने जिन तथ्यों की तालिका दी है, उनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं। एक, पूर्वी अपभ्रंश में कुछ संस्कृत ध्वनियों का परिवर्तन इस प्रकार होता है। आय क्ष ग्रेटर दन ख, कख, जैसे क्षण ग्रेटर दन खण, एक अक्षर ग्रेटर दन अक्षर। अत, जैसे त्वम ग्रेटर दैन तुहु, तत्व ग्रेटर दैन तत्, त्व ग्रेटर दैन तू, द्व ग्रेटर दैन दू, जैसे द्वार ग्रेटर दैन द्वार, इव व ग्रेटर दैन ब, जैसे वज्र ग्रेटर दैन बज, वेद व्य, वी श ग्रेटर दैन श, सदो। संस्कृत श सुरक्षित रहता है। थ्री, आद्य महाप्रांत्व नहीं होता। 4. लिंग की अतंत्रता बहुत अधिक है। 5. निर्विभकिक संज्ञा पद बहुत मिलते हैं। अविकारी सामान्य कारक बनाने को प्रवृत्ति सभी अपभ्रंशों से अधिक दिखाई पड़ती है। 6. अन्य अपभ्रंशों की तरह यहाँ पूर्वकालिक और क्रियार्थक संज्ञा के प्रत्ययों में मिश्रण नहीं हुआ। पूर्वकालिक प्रत्यय ही का प्रयोग पूर्वी अपभ्रंश में क्रियाक संज्ञा के लिए भी हुआ है, जैसे कई इक्वल्स आई करी ई करना। सात, क्रियार्थक संज्ञा के लिए परिनिष्ठित अपभ्रंश की अन प्रत्यय का यहाँ प्रायः अभाव है। प्रायः इब ग्रेटर दन तव्यत प्रत्यय से क्रियार्थक संज्ञा भी बनाई जाती है। डॉक्टर शून्य तगारे ने पूर्वी अपभ्रंश की जो उपर्युक्त विशेषताएं लक्षित की हैं वे प्रायः ठीक हैं, लेकिन यदि वे द्वयकोशों की सीमा से आगे बढ़कर सरह और कांट की गीतियों अथवा चर्यापदों की भाषा का विश्लेषण करते तो उपर्युक्त स्थापनाओं की पुष्टि के लिए पुष्कल प्रमाण मिलते, साथ ही कुछ और भी नई विशेषताएं दृष्टिगोचर हो जातीं। जैसा कि प्रो शून्य पी शून्य सी शून्य बागजी बहुत पहले ही लिख चुके हैं, वस्तुतः द्वयकोशों की रचना बहुत कुछ परिनिष्ठित अपभ्रंश में ही हुई है। जो पछाही भाषा थी उनमें केवल कहीं कहीं कुछ स्थानीय प्रभाव तथा लिपि शैली के कारण पूर्वी प्रदेश की बोली के लक्षण दिखाई पड़ जाते हैं। चर्यापदों की भाषा में द्वयकोशों की अपेक्षा पूर्वीपन अधिक है। किसी एक दोहा और चर्यापद की तुलना से यह बात स्पष्ट हो सकती है। नीचे तुलना के लिए कह 1. पी शून्य सी शून्य बागची ए शून्य नोट ऑन द लैंग्वेज ऑफ द बुद्धिस्ट दोहाज ओरिएंटल जर्नल कलकत्ता जिल्द 1 पेज नंबर 52 का ही एक दोहा तथा एक गीत उद्धृत किया जा रहा है। 1. जिमी लोन विलेज जय पानिये ही तिम धरनी लड़चित समरस जाय तखन जय पुनुते समनित 32 2. नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुडिया छाई छोड़ जाय सो बामहन नाडिया आलो डोम्बी तोय सम करिब मसंग निघिन कांट कपाली जोई लंग 10 अंश। दोहों की भाषा में डॉक्टर शून्य तगारे को जो भूत कृदंत प्रत्यय लर अथवा इल के दर्शन नहीं हुए, चर्यापदों में इसके दर्जनों उदाहरण उन्हें सहज ही मिल जाते। 1. हऊ सूतेली महासुह लीले 18 कान्ह 2. सुअने मई देखिल तिहुआ सुअन 36 कान्ह 3. चिया रा सहावे मुकल 32 सरह 4. सरह भनी बप उजू बट भैला 32 सरह। गीतों की भाषा में पूर्वीपन का होना स्वाभाविक था क्योंकि वे साधारण लोगों के गाने के लिए लिखे गए थे। इनके विपरीत दोहों की भाषा का पछाह की परिनिष्ठित अपभ्रंश में होना अनिवार्य था क्योंकि उनमें ज्ञान की सूक्ष्म बातें कही गई थीं। साखी दोहा को पछाह की परिनिष्ठित भाषा में कहने तथा शब्दी पद को स्थानीय पूर्वी बोली में गाने की परंपरा सिद्धों के बाद भी कबीर आदि तक चलती रही। साहित्य की भाषा में पछाह और पूरब का क्षेत्रीय भेद प्राकृत काल से ही चला आ रहा है और अपभ्रंश युग में उस भेद के मिट जाने का कोई तर्कसंगत ऐतिहासिक कारण नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए डॉक्टर शून्य तगारे के वर्गीकरण में जहां दक्षिणी अपभ्रंश नामक भेद केवल कल्पना है, वहां पूर्वी अपभ्रंश का भेद वास्तविक है, इस शर्त के साथ कि पूर्वी अपभ्रंश की अधिकांश विशेषताएं चर्यापदों में सुरक्षित हैं। चर्यापदों के आधार पर पूर्वी अपभ्रंश की स्थापना की जाती तो डॉक्टर शून्य तगारे से प्रो शून्य अल्फ्रेड मास्टर को ये शिकायत न रहती कि पूर्वी अपभ्रंश के वर्गीकरण का आधार बहुत स्वल्प है। किंतु इसके साथ ही अल्फ्रेड मास्टर की यह सम्मति युक्तिसंगत प्रमाणित नहीं होती कि डॉक्टर शून्य तगारे का क्षेत्रीय विभाजन उचित है। मास्टर को आपत्ति है अपभ्रंश के पूर्वी भेद पर, जबकि आपत्ति होने चाहिए उसके दक्षिणी भेद पर। वस्तुतः भारतीय आर्य भाषा की पूर्ववर्ती परंपरा के अनुसार अपभ्रंश के भी केवल दो क्षेत्रीय भेद थे, पश्चिमी और पूर्वी, जिनमें पश्चिमी अपभ्रंश परिनिष्ठित थी तथा पूर्वी अपभ्रंश उसकी विभाषा मात्र थी। 1. बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज खंड 13 भाग 21 पेज नंबर 53। अपभ्रंश के इससे अधिक भेदों के सत्ता मनाने के लिए इस समय कोई गुंजाइश नहीं है। परिनिष्ठित अपभ्रंश और उसकी विशेषताएं। वैभाषिक और क्षेत्रीय दोनों भेदों के बावजूद अपभ्रंश भाषा का एक परिनिष्ठित रूप भी था। इस परिनिष्ठित अपभ्रंश का मूल आधार पश्चिमी प्रदेशों की बोली थी और ऐतिहासिक दृष्टि से यह शौरसेनी प्राकृत की परंपरा में थी, इसीलिए कुछ विद्वान इसे पश्चिमी अपभ्रंश और कुछ शौरसेनी अपभ्रंश कहते हैं। हेमचंद ने भी अपने प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश का व्याकरण लिख चुकने के बाद अंत में शेष शौरसेनीवत लिखकर इस तथ्य की ओर संकेत किया है। इसका अर्थ इतना ही है कि शौरसेनी अथवा पश्चिमी अपभ्रंश ने शौरसेनी प्राकृत की कुछ विशेषताओं का निर्वाह करते हुए बहुत सी नई विशेषताएं भी प्राप्त कर ली थीं। अपभ्रंश के इस परिनिष्ठित रूप को ठीक ठीक जानने के लिए उसमें प्रचलित प्राकृत के दाय भाग और स्वयं अपभ्रंश द्वारा अर्जित अपनी विशेषताओं का पृथक पृथक बोध आवश्यक। लिपि शैली की कठिनाइयां। लेकिन प्राचीन भाषाओं का वास्तविक रूप जानने में सबसे बड़ी बाधा ये है कि वे जीवित भाषाओं की तरह बोलचाल के रूप में प्राप्त न होकर लिपि के माध्यम से ही सुलभ हो पाती हैं। इसलिए उनकी ध्वनि संबंधी सूक्ष्मताओं की ठीक ठीक जानकारी तो हो ही नहीं पाती, कभी कभी लिपिकारों के प्रमाद से रूप संबंधी विशेषताओं में भी गड़बड़ी हो जाती है। ये बात अपभ्रंश भाषा के विषय में भी लागू होती है। अपभ्रंश भाषा की अधिकांश ध्वनि संबंधी विशेषताएं तथा कुछ रूप संबंधी विशेषताएं उसके ग्रंथों की लिपि शैली ऑर्थोग्राफी पर निर्भर है। यद्यपि अपभ्रंश काव्यों के विद्वान संपादकों ने बहुत सावधानी से संपादन करके अनेक काव्यों का वैज्ञानिक संस्करण प्रस्तुत किया है, फिर भी ध्वनि विचार और रूप विचार को प्रभावित करने वाली कुछ लिपि शैली संबंधी समस्याएं रह जाती। संदेश रास्क की भाषा पर विचार करते हुए श्री हरिवल्लभ भायानी ने लिपि शैली की कुछ समस्याएं उठाई हैं। 1. अनुनासिक विधि अपभ्रंश लिपि शैली की पहली समस्या है जिसका प्रभाव उसके रूप विचार पर भी पड़ता है। उदाहरण स्वरूप तृतीया और सप्तमी के एकवचन और बहुवचन के लिए विभक्ति चिन्ह कहीं ही मिलता है और कहीं ही। इसी तरह षष्ठी एकवचन और बहुवचन में भी कहीं हम है और कहीं ह। अनुनासिक विधि द्वारा उत्पन्न होने वाले ये अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 1. संदेश रास्क भूमिका 10 पेज नंबर 54। 2. लिपि शैली की दूसरी समस्या है ई और य का परस्पर विपर्यय। पूर्वकालिक क्रिया के रूपों में इसके कारण काल क्रम का अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3. इस लिपि शैली में य श्रुति की अनिश्चितता भी बहुत देखी जाती है। फिर आ और आ के बीच में य श्रुति का प्रयोग अनिवार्यतः दिखाई पड़ता है, जबकि ई और ऊ के पूर्व प्रायः लुप्त रहता है। इनके अतिरिक्त अन्यत स्थिति के अनुसार वैकल्पिक होता है। 4. अन और न के लेखन में भी अपभ्रंश लिपिकारों ने पर्याप्त प्रमाद दिखलाया है। संपादकों ने प्रायः शब्द के आरंभ में अन को ही प्रश्रय दिया है, लेकिन आदि न का सर्वथा बहिष्कार करना कठिन है। 5. बर और व के अनुलेखन में भी काफी गड़बड़ी है। अनेक लिपिकारों ने प्रायः ब को व लिखा है। ऐसी स्थिति में अपभ्रंश की ध्वन्यात्मक विशेषताओं पर अंतिम निर्णय देना खतरे से खाली नहीं है। फिर भी अनेक ग्रंथों की छानबीन करते करते विद्वानों ने कुछ सामान्य नियम स्थिर किए हैं जिन्हें स्वीकार किया जा सकता है। ध्वनि परिवर्तन के नियम। प्रायः ये देखा जाता है कि प्राकृत में स्वतंत्र अपभ्रंश ध्वनि विचार नाम की कोई चीज नहीं है। अपभ्रंश ध्वनियां मूलतः प्राकृत ध्वनि समूह का ही अनुसरण करती हैं। अपभ्रंश की विशिष्टता केवल दो बातों में दिखाई पड़ती है, क ध्वनि परिवर्तन की जो प्रवृत्ति प्राकृत में सामान्य थी वह अपभ्रंश में विशेष प्रबल अथवा प्रधान हो उठी, या ख अपभ्रंश में कुछ ध्वनि परिवर्तन ऐसे भी हुए जो प्राकृत से सर्वथा नए थे। 1. इस तरह अपभ्रंश में ध्वनि परिवर्तन की पहली और सबसे प्रधान प्रवृत्ति है अंत्य स्वर का ह्रस्वीकरण। इसका तात्पर्य यह है कि जो अपभ्रंश के अपने शब्द हैं उन सब का अंत ह्रस्व स्वर से होता है। अंत्य स्वर के ह्रस्वीकरण की प्रवृत्ति थोड़ी बहुत संस्कृत पाली और फिर प्राकृत काल से ही चली आ रही है, लेकिन अपभ्रंश में ये प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल हो गई। प्रथमा और द्वितीया विभक्तियों में संस्कृत ओ का ऊ हो जाना, जैसे देवो ग्रेटर दैन देवु, इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। स्वयं अपभ्रंश में भी कालक्रम से यह प्रवृत्ति बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी। छंदों में पंचमी षष्ठी एकवचन के विभक्ति चिन्ह और हो क्रमशः है और हो की तरह उच्चरित होने लगे थे। हेमचंद्र प्राकृत हे एक एल्सडॉर्फ अपभ्रंश स्टडीज प्री 071 डॉक्टर 011 ही 0 ग्रह 0 of 018 191 श्री भायानी द्वारा संदेश रास्क 11 में उद्धृत पेज नंबर 55 व्याकरण में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं गिरहे सिलायलु तरुहे फलूह कंतों दोसड़ा आदि। इस प्रधान प्रवृत्ति के अतिरिक्त विद्वानों ने अपभ्रंश स्वर परिवर्तन संबंधी कुछ और छोटी छोटी प्रवृत्तियों को ब्यौरा दिया है। डॉक्टर 011 के अनुसार अपभ्रंश में एक उपांत्य स्वर की प्रायः रक्षा की जाती है। 2. कुछ अपवादों के बावजूद प्राकृत से प्राप्त शब्दों में प्रायः आदि अक्षर तथा स्वर की मात्रा सुरक्षित रहती है। 3. प्राकृत शब्दों के संयुक्त व्यंजन में से केवल एक व्यंजन का रखकर पूर्ववर्ती स्वर में क्षतिपूरक दीर्घीकरण हो जाता है। 4. प्राकृत की ही भांति उद्वृत स्वरों के विच्छेद हाइटस को यथावत रखा जाता है। 5. शब्द के बीच य व ब ह और कभी कभी र के आगम द्वारा उद्वृत स्वरों का पृथक अस्तित्व सुरक्षित किया जाता है। 6. यद्यपि बोलचाल की अपभ्रंश में उद्वृत स्वरों को एकीकरण द्वारा संयुक्त स्वर कर देने का आभास मिलता है, तथापि साहित्यिक अपभ्रंश में ये प्रवृत्ति बहुत कम दिखाई पड़ती है। अपभ्रंश में व्यंजन ध्वनियों के परिवर्तन संबंधी कोई सर्वथा नई और प्रमुख प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती। यहाँ भी वह बहुत कुछ प्राकृत का ही अनुसरण करती है। इस संबंध में विद्वानों ने लक्षित किया है कि एक आदि और अनादि स्पर्श व्यंजनों का महाप्राण रूप हो जाता है। 2. री अथवा र के समीपवर्ती दंत्य व्यंजन मूर्धन्य हो जाते हैं। 3. आदि य प्रायः ज हो जाता है। इस तरह अपभ्रंश में य का कोई ध्वनि मूल्य नहीं था। 4. उष्म व्यंजनों में से अपभ्रंश में केवल स अवशिष्ट था। 5. यद्यपि प्राकृत व्याकरणों ने अपभ्रंश में मध्यम क तप तथा ख थ फ जैसी अघोष ध्वनियों के घोष ग द ब घ ध और भ हो जाने की व्यवस्था दी है, फिर भी अपभ्रंश साहित्य में इस व्यवस्था का पालन नहीं मिलता। अपभ्रंश साहित्य में प्राकृत के ही अनुसार क ग च ज त द और प भी लुप्त हो जाते हैं। इसी तरह ख घ थ ध फ भ प्रायः ह हो जाते हैं। 6. यद्यपि प्राकृत व्याकरणों ने अपभ्रंश में संयुक्त र को सुरक्षित लक्षित किया है और प्रांगण प्रयाब्दी प्राव प्राइव प्रिय जैसे प्रयोग भी मिल जाते हैं, तथापि एक ही 0 ग्रह 0 of 020-3011 पेज नंबर 56 सामान्यतः अपभ्रंश में संयुक्त र के समीकरण की ही प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। 7. प्राकृत व्याकरणों के कथन के बावजूद अपभ्रंश में र का आगम बहुत कम दृष्टिगोचर होता है।
8.
यद्यपि म अपभ्रंश में यथावत सुरक्षित था, किंतु म वम परिवर्तन की प्रवृत्ति बहुत अधिक दिखाई पड़ती है।
इस परिवर्तन का आरंभ प्राकृत काल से ही हो गया था, लेकिन इसकी अधिकता को अपभ्रंश की अपनी विशेषता कहा जा सकता है।
रूप निर्माण की प्रमुख प्रवृत्तियां। अपभ्रंश जिस विषय में प्राकृत से पृथक अस्तित्व तथा उससे ऐतिहासिक विकास घोषित करती है, वह है उसकी रूप निर्माण संबंधी विशेषता।
राहुल जी के शब्दों में उसने नए सुबंतों और तिनतों की सृष्टि की है।
यद्यपि अपभ्रंश साहित्य में प्राकृत काल के प्राचीन रूप बहुत दिनों तक प्रचलित रहे और बड़े बड़े अपभ्रंश कवियों की भाषा की प्राकृत प्रभाव से सर्वथा मुक्त न थी, फिर भी अपभ्रंश रूप निर्माण की निजी प्रवृत्तियां क्रमशः अपनी प्रधानता स्थापित करती चली गई।
ऐतिहासिक दृष्टि से यही नए रूप विशेष महत्वपूर्ण हैं।
विद्वानों ने अपभ्रंश रूप निर्माण की प्रमुख प्रवृत्तियों का निर्देश इस प्रकार किया।
1.
रूप निर्माण की दृष्टि से प्रातिपदिकों की विविधता अपभ्रंश में नहीं रही, विभिन्न स्वरांत के प्रातिपदिक अकारांत पुल्लिंग शब्द के कारक रूपों से प्रभावित थे।
इस तरह रूप निर्माण की दृष्टि से अपभ्रंश में केवल अकारांत पुल्लिंग प्रतिपदिक की सत्ता थी।
2. व्याकरणिक लिंग भेद क्रमशः समाप्त हो चला था और नपुंसकलिंग तो व्यवहारत लगभग लुप्त हो गया।
3.
कारक विभक्तियां अपभ्रंश में आते सिमट कर केवल तीन समूहों एकत्र हो गई थीं। पहला समूह प्रथमा द्वितीय और संबोधन का, दूसरा तृतीय और सप्तमी का, तथा तीसरा चतुर्थी पंचमी और षष्ठी का।
इन तीनों समूहों में से अंतिम दोनों में प्रायः मिश्रण और विपर्यय हुआ करता था, जिससे कभी कभी रूप निर्माण की दृष्टि से सामान्य कारक डायरेक्ट केस और विकारी कारक ऑब्लिक केस दो ही का अस्तित्व रहता था।
इस तरह जहां संस्कृत में कारकों के लिए एक शब्द के 21 रूप होते थे और प्राकृत में 12, वहां अपभ्रंश में लगभग 6 रूप रह गए।
अपभ्रंश की घिसी हुई कारक विभक्तियां भी प्राकृत से ज्यादा दूर थीं, जैसे तृतीय एकवचन में अन की जगह अय और षष्ठी एकवचन में सस की जगह आदि।
पेज नंबर 57.
4. अधिकांशतः प्रथमा और द्वितीया में तथा कभी कभी अन्य विभक्तियों में भी केवल निर्विभक्तिक शब्द का प्रयोग किया जाता था।
5. निर्विभक्तिक पदों तथा घिसे हुए सविभक्तिक रूपों से उत्पन्न अव्यवस्था और गड़बड़ी को दूर करने के लिए अपभ्रंश में अनेक स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग परसद की तरह किया जाने लगा, जैसे तृतीया के लिए सहूं तण, चतुर्थी के लिए केही रेसी, पंचमी के लिए होतव होंत थियु, षष्ठी के लिए केर केर कर का की और सप्तमी के लिए मज्झ मह आदि।
6. काल रचना की दृष्टि से अपभ्रंश धातुओं के तिन्त रूप मुख्यतः लट लोट और लरिट लकारों में ही होते थे, शेष लकारों के रूप प्रायः कृत्तज होने लगे।
7. प्राकृत तक लट सामान्य वर्तमान काल के रूप प्रायः संस्कृत से मिलते जुलते होते थे, जैसे कर्मी की करसी अन्य पुरुष करई।
वहां अपभ्रंश तक आते आते ये रूप और भी घिस गए तथा इनका रूप पुरानी हिंदी से मिलता जुलता हो गया है, जैसे ऊ शून्य पू शून्य करूं म शून्य पू शून्य करही उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष कर्ब करह करंती करहूं करह अ शून्य पू शून्य करी करही आठ लोट आज्ञा के रूपों में संस्कृत और प्राकृत की सी विविधता अपभ्रंश में नहीं रही।
प्रायः ई और ऊ कारांत रूप होते थे, जैसे कर करी करू।
9. अपभ्रंश में लरिट सामान्य भविष्यत के रूप संस्कृत शियर और प्राकृत सस के अवशेष स्वरूप स और ह दोनों प्रकार के होते थे, जैसे करिसई और करेहई।
लेकिन परिनिष्ठित अपभ्रंश में
प्रकार की प्रधानता थी। 10. विधिलिन के रूप अपभ्रंश में प्रायः प्राकृत की ही तरह ज प्रकार के होते थे, जैसे करिज जई आदि। 11. अपभ्रंश में भूतकाल के क्रियापद तिंत नहीं थे। भूतकाल की रूपरचना या तो कत आदि भूत कृदंत के प्रत्ययों द्वारा होती थी, जैसे गए गम जोड़ कत अथवा भू अस क्री आदि सहायक क्रियाओं के द्वारा। संयुक्त काल के रूप में 12. अपभ्रंश में संयुक्त क्रिया बनाने की प्रवृत्ति बहुत तेजी से चल पड़ी, जबकि प्राकृत में नहीं के बराबर थी, जैसे रजतव जाय जाउन गऊ भग्गा इंतु भजजीयु जंती आदि। 58. हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 13. क्रियार्थक संज्ञा के निर्माण के लिए प्राकृत में जहां तुमुन 8 यू एव ऊ आदि प्रत्ययों का उपयोग किया जाता था, वहां अपभ्रंश में इन सब के स्थान पर मुख्यतः अण का प्रयोग होने लगा। 14. पूर्वकालिक क्रिया के प्रत्ययों में अपभ्रंश ने प्राकृत के ई एपी एपिनु एवी एविनु का निर्वाह करते हुए भी मुख्यतः ई को ही अपनाया, जैसे सुनी चली करी आदि। 15. अन्य प्रत्ययों में स्वार्थिक प्रत्यय ड के प्रयोग की बहुलता अपभ्रंश की निजी विशेषता है। 1. उच्चारण और व्याकरण के अतिरिक्त अपभ्रंश ने शब्दकोश के क्षेत्र में भी विकास का नया चरण रखा। कुछ तो उसने तद्भव शब्दों में और भी ध्वनि परिवर्तन करके अपनी छाप लगा दी और कुछ देशी शब्दों के ग्रहण से अपना कोश समृद्ध किया। इसका विस्तृत विवेचन आगे किया जाएगा। पश्चिमी अथवा शौरसेनी अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप को इन मुख्य प्रवृत्तियों को देखने से कोई भी व्यक्ति दो निष्कर्षों पर पहुंचेगा। एक तो ये कि जो भारतीय आर्य भाषा संस्कृत और प्राकृत काल में प्रधानतः संश्लिष्ट थी, वह अपभ्रंश तक आते आते विश्लिष्टता की संभावनाओं को अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकट करने लगी, और इस तरह अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा की विश्लिष्ट संश्लिष्ट अवस्था के संधिकाल की सूचना देती है। 2. ये कि अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत की तरह व्याकरण प्रधान अथवा व्याकरणिक भाषा नहीं थी, क्योंकि सरलीकरण की प्रबल प्रवृत्ति ने अपभ्रंश के ढांचे को व्याकरण के जटिल नियमों से बहुत कुछ मुक्त कर दिया। प्राकृत और अपभ्रंश का अंतर तथा संस्कृत से उनकी निकटता और दूरी देखने के लिए किसी एक गाथा तथा दोहा की तुलना की जा सकती है। 1. उह निचल निपंडा भिसिनी पत्तमी रेहड़ बला निम्मल मर्ग भार परिठिया समक सुती वी गाहा सत्सई। कुल मिलाकर अपभ्रंश के विषय में याकोबी का ये कथन विचारणीय है कि अपभ्रंश एक मिश्रित भाषा थी जिसने अपने शब्दकोश का अधिकांश साहित्यिक हिम शून्य प्राकृत व्याकरण प्राकृतों से ग्रहण किया था और अपना व्याकरणिक गठन देशभाषाओं से। इससे स्पष्ट 2 बाह बिछोवी जाही तुह हउ तेवी को दोस हियाय छियु जई नीसर ही जानू मुंज सरोसु भविष्यत कहा फ्री 068 श्री भायानी द्वारा संदेश रास्क की भूमिका 77 में उद्धृत अपभ्रंश भाषा 59 है कि अपभ्रंश के शब्द समूह में प्राचीनता थी लेकिन उसके व्याकरण में नवीनता के अंकुर थे। दूसरे शब्दों में अपभ्रंश का ध्वनि विचार प्राकृत से प्रभावित था किंतु उसका व्याकरण प्राकृत प्रभाव से मुक्त होकर लोक बोलियों के सहारे भारतीय आर्य भाषा के विकास की नूतन संभावनाएं प्रकट कर रहा था। काल क्रम से अपभ्रंश में प्राचीनता और नवीनता बढ़ती गई, यहां तक कि अपभ्रंश ने अपने गर्भ से अनेक स्वतंत्र क्षेत्रीय भाषाओं को जन्म दिया।